टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली वो कई सेशन से मुश्तमिल हो सकता है, क्योंकि एक सेशन में इसको रैपअप करना जो है वो पॉसिबल तकरीबन नामुमकिन है। तो स्ट्रैटेजी ये होगी कि हम एक सेशन के अंदर कुछ टिप्स बयान करेंगे, एक सेशन के अंदर हम जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो अगर आपने बच्चों से डील करना है और ख़ुद बीइंग पेरेंट, तो पेरेंट की साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए वो हमें है या नहीं, आप आइडेंटिफाई कर सकते अपने आप को। दूसरे नंबर पर बच्चा बिहेव कैसे करता है, तो आपको पता है चाइल्ड के डिफरेंट स्टेजेज होती हैं लाइफ की। हर लाइफ के स्टेज के अंदर जो माहिरीन इस फील्ड के, वो चाहे साइकोलॉजिस्ट हों या मुफक्किरीन हों या वो लोग के जो चाइल्ड डेवलपमेंट में काम करते हैं उनकी तहकीक हो, हर एज के एतबार से बच्चे की नफ्सियात में बतदरीज तब्दीली आती है। तो जो हम बात करते हैं बच्चों के मसाइल में, हम आजकल माशरे में देख रहे हैं, तो उसका आगाज़ हमें बहुत पहले से ही करना होता है। उसूल इस्लामी लिहाज तो उस वक्त के जब वो दुनिया में भी नहीं आया, लेकिन उस फैक्टर को हम टच नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि अगर वो दुनिया में आ चुका है तो आपको किस उनवान को सामने रखना चाहिए जब आपका बच्चा 1 साल का है, 3 साल का है, 5 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, 12 से 17 साल की एज। तो हम अपने लेक्चर्स में इन तमाम स्टेजेस जो बयान किए हैं इसको हम बताएंगे कि इस एज में बच्चे की डेवलपमेंट की नीड्स क्या हैं और क्यों हम उसको एड्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। तो आपको उस एज की एक बच्चे की साइकोलॉजी पता हो, उस एज में वो बिहेव किस तरह करता है और हम उससे रिएक्ट कैसे कर रहे हैं। तो चूंकि हम रिएक्ट राइट में इसलिए नहीं कर पाते कि हमें मालूम नहीं है कि बेसिकली इस एज में बच्चे का असल तकाज़ाए तरबियत क्या है। अच्छा, उससे पहले थोड़ा सा, ताकि अमूमन संडे का दिन है और आराम का दिन होता है, थकान इस दिन ही उतारी जाती है, तो मैं कोशिश करूँगा कि सेशन को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखूँ, यानी शुडेंट बी अ मोनोलॉग, इट शुड बी अ डायलॉग। पता ना आपको मोनोलॉग एंड डायलॉग का डिफरेंस? कैन एनी बडी टेल वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोनोलॉग एंड अ डायलॉग? फील फ्री, बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में उन्होंने बयान किया कि अगर स्पीकर बोले जा रहा है तो ये मोनोलॉग है, और रिसर्च इज सेज कि आफ्टर 40 से मैक्सिमम 50 मिनट्स बाद आप सेचुरेट हो जाएंगे। तो हम कोशिश करेंगे कुछ चीज़ें आपसे पूछें, और इस लिहाज से भी कहना चाहूँगा कि मैं आप ऑनेस्टली उनको बयान कीजिएगा, ताकि अगर किसी पेरेंट्स को बहुत ही कुछ सीवियर इश्यूज़ हैं बिहेवियर प्रॉब्लम्स के बच्चे के साथ, तो हम उसको वन टू वन मेंटोर कर सकें, ठीक है ना। क्योंकि जो रिहैब टेक्नोलॉजी होती है उसके अंदर अब बहुत सारी चीज़ें जो केस स्पेसिफिक होता है उसके हिसाब से डील करते हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें पूछेंगे आप बयान करिएगा जो आप घर में फेस करते हैं, ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे कि ये घर की बातें जो है वो मैं क्यों सबके सामने बयान करूं, लेकिन ये इसलिए आज थे कि हम इसी सेशन के तजुर्बात, क्योंकि हम एक हमारा बड़ा मसला क्या होता है कि हम जो किताबें पढ़ लेते हैं वेस्ट में लिखी गई हैं, तो वेस्ट के कल्चर, वेस्ट की नीड, वेस्ट की डिमांड, वैल्यूज़ अलग हैं और हमारे मुआशरे के तकाजे अलग हैं। तो हम इसी अनावीन जो हम लोग अपने अतराफ में पेश करते हैं वही तजुर्बात को इस्तेमाल करके ही हम फिर कुछ नतीजे लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है जनाब। तो कुछ चीज़ें जब से रिस्टार्ट हो गया गालबा, कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा सेशन को आगाज करने से पहले, जस्ट लिस्ट डाउन कि जो प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं आज के इस दौर के अंदर अपने बच्चों के हवाले से, वो 1 2 3 4 करके कुछ चीज़ें बयान करें, ताकि फिर हम उसको जब चिपिन करेंगे उन सोल्यूशन की तरफ जो बयान किए जाएंगे, ताकि आपको पता लगे कि कौन सा वाला पॉइंट कहाँ इंटीग्रेट करना है सोल्यूशन के एतबार से। तो बिल्कुल, अगर आप इसको वापस समराइज करेंगे तो ये सब का सब लिंक्ड है विद द स्क्रीन टाइम। अब वो स्क्रीन टाइम में देख क्या रहा है, जैसे भाई ने बात की कि क्योंकि स्टडीज भी आपकी बहुत सारी जूम पे इस तरह पे हो रही हैं, तो वो चीज़ें भी स्क्रीन टाइम है, तो इसलिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जब हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए और उसको किस वे में इस्तेमाल करना है, राइट वे में, रॉन्ग वे में। जितना हर चीज़ का राइट रॉन्ग यूज है, आप छुरी से मार भी सकते हैं, छुरी से तब्दीली भी काट सकते हैं, तो वो इसी तरह नेट के अंदर भी है और मोबाइल के अंदर भी है कि आप चीज़ों को राइट एंड रॉन्ग दोनों वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो नट सेल के अंदर पॉइंट वही आएगा, बेसिकली मुझे देख रहा है मीडिया के ऊपर वो क्या देख रहा है, जिसको कि बिहेवियर के अंदर डिफरेंट नेगेटिव एट्रीब्यूट जो है वो डेवलप हो रहे हैं पर्सनैलिटी के अंदर जो होने नहीं चाहिए, और यही चीज़ें जो है वो फिर जैसे मैंने बात की कि बिहेवियर इशूज के अंदर जैसे मैंने बात की चिड़चिड़ापन का होना, बिल्कुल ये वन ऑफ जो नई क्लासिफिकेशन है डिग्रीज की, जो बहुत सारी ऐसी डिग्री है जो आपकी इंटेलिजेंट बेस के ऊपर है। जैसे आपने अगर किसी को पता ऑटिज्म, यानी वो बीमारी जिसमें डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है और बच्चा जो है वो बड़ा तो फिजिकल हो रहा होता है लेकिन मेंटली नहीं हो पा रहा होता, तो इसको हम ऑटिज्म कहते हैं, ऑटिज्म एंड एडीएचडी। बाकायदा पूरा क्लासिफिकेशन है जिसमें हम जो लोग फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे यंग एज के अंदर, तो डिफॉल्ट फेसबुक ऑटिज्म, तो फेसबुक इज ऑल्सो कॉजिंग ऑटिज्म। ठीक है, इस तरह बहुत सारी डिजीज हैं जिसके अंदर एक डिजीज है बेसिकली इज कॉल्ड स्लीप टेक्स्टिंग, कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मैसेजेस करने की आदत है वो लाशौरी तौर पर सोते में भी टेक्स्ट कर देते हैं। तो ये कोई बुरी बात नहीं कर, हम कोई ये स्टडीज पब्लिश हैं यूएस के अंदर, क्योंकि जारी बात है चीज़ों पर यहाँ पर काम नहीं होता, तो जर्नल से पब्लिश हुई है कि बेसिकली कॉलेज के और यूनिवर्सिटी पुलिस ने रिपोर्ट की है कि इसके भाई हमें तुम्हारे तरफ से मैसेज और समझ नहीं आया, मतलब ये जिस कॉमन तो फिर एपिडेमियोलॉजिस्ट ने वहाँ पर स्टडी के सर्वे किए हैं, इसमें पता लगे कि ये तकरीबन 17% लोगों का प्रॉब्लम है वहाँ पर, तो इतना आदमी है टेस्ट करने के कि वो लाशौरी तौर पर सोते में भी किसी मोबाइल इस्तेमाल करते करते सो जाते हैं, और आपका हाथ खुद सिंक्रोनाइज हो गया बटन के साथ तो वो टेक्स्ट कर रहा होता है, जिसकी भी कॉन्टेक्ट जैसे ऊपर नंबर हो गया रिसेंट नंबर पे चला जाएगा, तो पता है कि डेट इज कॉल स्लीप टेस्ट। सब बीमारियां जिन लोगों को सेल्फी लेने की आदत है उन सेल्फाइटस कहते हैं, ये इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर। फर्स्ट टाइम ये 2017 के अंदर रिपोर्ट हुआ था जनरल ऑफ मेंटल हेल्थ के अंदर, कि जो लोग सेल्फी ले रहे हैं इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बेसिकली कोई नॉर्मल चीज नहीं है, इट्स अ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, इसको हम सेल्फाइटस कहते हैं, इसकी भी तीन कैटेगरी है। जी कोई और गुस्सा एग्रेशन चिड़चिड़ापन बात करना सुनना, ये सब ये बिहेवियरल जो आउटकम आप बता रहे सारे ये सब के सब जो है वो इसमें दो कोर चीजें, एक कोर चीज में जो घर की थी जो स्टार्ट में करने चाहिए थे क्योंकि वो इल नहीं था, हमें कैसे डील करना था बच्चे को ज्यादा के गुजारते, अब उसमें डेवलप हो गई, तो अब उसको करें कैसे कुछ चीजें बता देंगे, तो लेकिन ऑल्टो बदल बिहेवियर जो भी जितना गुस्सा चिड़चिड़ापन ना सुनना फोकस ना करना कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम मेमोरी के इशूज जल्दी हाइपर हो जाना, ये सब चीजें क्या है बेसिकली बिहेवियर इशूज हैं, और वो तरबियत के प्रोदान की वजह से और बाकी सारा काम मीडिया ने बराबर कर दिया। एनीवन एल्स? जी सही, जिससे दोनों तो कोल्ड टेक के जब हम डील करते हैं किड्स को, तो हमें फ्री टाइम, मतलब फ्री टाइम इज नॉट जस्ट द फ्री टाइम, इसके अगर एक और वर्ड ऐड करके क्वालिटी फ्री टाइम। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ क्वालिटी टाइम, क्वालिटी फ्री टाइम है ना फ्री टाइम। ठीक है, तो वो ये टिप के अंदर है कैसे वर्क करते हैं, तो ये टिप है बेसिकली कैसे और क्या करना है उन्हें फ्री टाइम के अंदर बच्चों के साथ कि वो इन चीज़ों से आज तक बाहर निकले, वो टिप के अंदर इंशाल्लाह वाला पॉइंट बिल्कुल एडिड है। कुरान में से खवातीन में से कोई कुछ जारी बात है, पेरेंटिंग के अंदर जो मेजर रोल आता है फादर्स से ज्यादा वो मदर्स का आता है, कोई मदर अगर बताना चाहे अगर आवाज़ हमारे तक आ सके तो, या कोई वॉलंटियर कर ले बता दे कि भाई ये पॉइंट्स हैं, जब से हम प्रेजेंटेशन दोबारा खोलने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, पेशेंस की कमी अदम बर्दाश्त, तो हम टिप्स बताएंगे और मॉडल बताएंगे, उस मॉडल के अंदर एक मॉडल है विच इज कॉल्ड कॉपी मॉडल। सादा सा जवाब, क्या पेरेंट्स ने पेशेंस अपने में डेवलप की थी? इट इज कॉपी कैट। अगर आपने अदम बर्दाश्त की, आप फॉरन आईब्रो पे थप्पड़ लगाते थे, तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो चाइल्ड में डॉक्टर हो तो पेशेंस इन फ्रंट ऑफ यू, यू आर नॉट अ बादशाह। कोई पहले का जमाना नहीं कि बादशाह के आगे हाथ जोड़ लिए, अब तो वन टू वन उसे जो तरबियत दी गई है स्कूल करने से वन टू वन फिनोमेना, जिसे कहते हैं तुर्की पर तुर्की जवाब देना सिखाया जाता है स्कूल के अंदर, इसको क्या नाम कहते हैं हम, कॉन्फिडेंस आना है बच्चे में, इसलिए आप जवाब दें बेटा नजर ना झुका, इंसान कहते हैं नजर झुकाओ कहता है आंखों में आंख डाल के बात करो, नर्वसनेस है आपका चाहे क्या, वेस्टर्नाइजेशन के अंदर ये सारी गरीब बातें स्कूल में जब पढ़ेंगे तो फिर ये चीजें आएंगी, हम इसको कॉन्फिडेंस का नाम दे रहे हैं जबकि ये चीज जो है वो हया के खिलाफ है। ठीक है, तो ये सब चीजें क्यों आ रही है, इसीलिए आ रही है कि बेसिकली हमने खुद अडॉप्ट नहीं किया अपने अंदर। जी बहुत अच्छा पॉइंट था आपके, उसका जवाब सादा सा है, दोस्तों भी शामिल होगा कि बेसिकली खुद मॉडल बनेंगे वो मॉडल को अडॉप्ट करें, अगर आप मॉडल नहीं है कैसे अडॉप्ट करेंगे। सही है, नेक्स्ट।
कोई और आर्ग्यूमेंट्स?
जी जी
बिल्कुल। तो अलग पॉइंट से इसमें उन्होंने ध्यान किए, तो एक पॉइंट को हम बहुत एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन शायद वो आज के सेशन में ना हो, नेक्स्ट सेशन में। जो स्टेजेस हैं 3 ईयर 5 ईयर 7 ईयर, इसमें बच्चा क्या करता है बिहेवियर वाइज, वो क्या एक्सपेक्ट करता है आजकल? तो जाहिर बात है जब आप आर्ग्यूटिव बिहेवियर रखेंगे तो आपको अगर हम आर्ग्यू ना करें तो क्या करें? इंशाल्लाह वो नेक्स्ट सेशन, इस सेशन में शायद कवर ना हो, नेक्स्ट में बताएंगे। और दूसरा वाला पॉइंट बेसिकली जो उन्होंने पॉइंट किया था वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है कि जो कि हम टिप्स के अंदर बयान करेंगे कि किस तरह जो है वो बच्चा जब आर्ग्यूमेंट कर रहा होता है, और आर्ग्यूमेंट के दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट एक नेगेटिव आर्ग्यूमेंट। और पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट के क्या इम्पैक्ट्स निकलते हैं और नेगेटिव के क्या निकलते हैं, ये बहुत सारे डिफरेंट डिटेल्स हैं इसकी। सिमिलरली कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है जी। कोई और पॉइंट्स बताना चाह रहे हैं? पेरेंट्स की बात ना मानना इसके अंदर, ठीक है बिल्कुल। वो अता उदारी वाला अनुमान है, ठीक है ना। तो ये एक जारी बात है, कॉमन सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे आजकल दौर में सुन नहीं रहे, ठीक है ना। उसकी वजह ये है कि अंदर एक मेजर कोर पॉइंट बेसिकली हमारी तालीम का है, क्योंकि तालीम में जैसे हमने बात की जो सिखाया जो कोर्स करिकुलम बनाया जाता है, कोर्स करिकुलम बनाने वाले जो लोग होते हैं दे आर एक्सपर्ट इन द फील्ड, ठीक है ना। जो जितनी मसलन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई यूनिवर्सिटी कोर्स डेवलप करना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत आसान है, लेकिन जब मैं प्राइमरी लेवल का कोर्स डिजाइन करने जाऊँगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। क्यों? कि जो चाइल्ड का लेवल है वो लेवल पे जाके जो उसके माइंड सेट में चलता है, उस माइंड सेट को रीड करके मुझे वो चीज़ डिलीवर करती है, एक मुश्किल चीज़ को उस अंदाज में पेश करना है कि जो उसके दिमाग में एज के हिसाब से फिट इन हो जाए, तो बहुत मुश्किल मरत। इसलिए जो करिकुलम बनाए गए हैं आज के दौर के वो जो वैसे, क्योंकि हम क्या इम्पोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास क्या चल रहा है ए लेवल ओ लेवल। अब इवन जो आगा खान बोर्ड की बात करें या देवउद्दीन बोर्ड की बात करें, इनके पीछे भी जो करिकुलम की बुक थे वो कहाँ हैं? वो ऑक्सफोर्ड वगैरह के बुक्स। तो वही चीज़ आपने बोर्ड की है, और वो इम्पोर्ट चीज़ क्या सिखाती है आपको? ये सिखाती है कि आप ओबीडियंस, टेक्निकल तो आपको लग रहा है कि वो माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, लेकिन रिस्पेक्ट की जो बाउंड्री उन्होंने खींची है वो बहुत ही डिफरेंट है इस्लाम ने बयान की। जो बात को एक्सेप्ट करने का लेवल उन्होंने डिफाइन किया है अपनी तरबियत के अंदर, वो नहीं है जो इस्लाम ने बयान किया। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट आएगा हमारे अकाइद के अंदर वो इसीलिए आता है बेसिकली कि हम पढ़ा बच्चों को वहाँ रहें उन स्कूल्स में कि जिनके करिकुलम आपको आपके थॉट प्रोसेस को वेस्टनाइज कर रहे हैं, जो कि आपको शायद फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट ये है। तो जहां पर हम आज खड़े हैं, मसलन इसमें जो कुछ बुजुर्ग जिनकी एज 50s के अंदर है, क्योंकि उन्होंने वो ट्रांजिशन फेज देखा है कि जब ये लोग किड थे तो कितनी ओबीडियंस थी, कितनी रिस्पेक्ट थी अपने पेरेंट्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, और वो आज हम जीरो लेवल पे देखें, जीरो लेवल स्पेशली यूनिवर्सिटीज के लेवल पे बात करें हम, देर इज नो रिस्पेक्ट टू पहले पेरेंट्स या असातिज़ा या दीगर बूढ़े अफराद की होती थी। रीजन क्यों? अब पूछ लें कि इन्होंने कहाँ से पढ़ा है, जो 50s 60s में पूछ लें उनसे घर जाके कि भाई आपकी स्कूलिंग कहाँ की थी, ओ लेवल्स की थी, ए लेवल्स की थी, कैम्ब्रिज की थी, ऑक्सफर्ड की थी, बीगन हाउस से पढ़ा है, सिटी इस जमाने में कोई चीज इस तरह टूटी, हाँ बहुत इलीट क्लास को निकाल के जर्नल तबका, इसलिए मुआशरे में रिस्पेक्ट भी थी, मुआशरे में सारी अखबार भी थी, क्योंकि जब हमने इम्पोर्ट कर लिया उसका इम्पैक्ट निकला। जिस तरह एक नशे को शुरू में जब जैसे सिगरेट का आदि बनाना, जो नशे का आदि ना, तो सिगरेट निकले सिगरेट पहले सिगरेट का आदि होगा, सिगरेट के बाद वो थोड़ा सा भरी हुई सिगरेट देगा ताकि वो हमसे ये आके खरीदे। तो यही फिनोमेना तरबियत के अंदर है, जो हमने इम्पोर्ट किए अपने स्कूलिंग सिस्टम के अंदर, जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर, वो सारे वही करिकुलम के पार्ट्स हैं जो बेसिकली वहाँ डेवलप। यही कराची के अंदर वो स्कूल्स हैं जो बेसिकली इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जहाँ पर नोटिफाई करके इस्लामियत निकाल दी गई, ठीक है ना। रीजन जरूरत नहीं स्कूल में कोर्ट में, तो मैं दीनदार बनाने के लिए थोड़ी स्कूल खोला है, तो लॉजिक के बेसिकली इज आप यू आर ओपन, आपको अगर नमाज पढ़नी है, अगर आपको दीन सीखना है, गो डू इट एट होम या आफ्टर स्कूल टाइम, लेकिन स्कूल में क्या जरूरत है नमाज पढ़ाना? ये थॉट कहाँ से डेवलप हुए? उस मैनेजमेंट के अंदर सवाल, इसके माने कि ये इतने बारीक स्लो पॉइजन होते हैं कि जब ये चीज हो जाती है फिर हमें नजर आता है, फिर परेशान हो जाते हैं। तो ये चीजें इतनी मामूली नहीं है। यानी ये जो चीज हम फॉर एग्जाम्पल शायद अभी हम बयान करें और आप लोग बहुत सारे अपराध चूंकि उससे इंडल्ज हों और उस चीज को डिनाई कर दें। मसलन ये जो आजकल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है, इसके शाखसाने 20-30 साल बाद बहुत ड्रास्टिक है। क्यों? कि अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है, घर बैठे बेटा बेटी जो है वो अभी वो BBA डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है थर्ड ईयर में, और $1,500-2,000 भी कमा, 1.5-2,000-4-5 लाख रुपए बड़ा खुश हो रहे हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट सोचा है कभी? 20 साल बाद आपकी यूथ बेसिकली खत्म हो चुकी होगी इंटेलेक्चुअली। क्या बन चुकी होगी? सिर्फ मल्टी मशीन मेकिंग मनी, जो मनी मेकिंग मशीन बन चुकी होगी। ठीक है, अब जो बात किसी एक ने अभी कही थी कि बेसिकली पढ़ लिख के जो है वो अलग यहां से कि बगैर पढ़े मतलब क्या करना, पढ़ाई करें ये करें वो करें, जब हम घर बैठे यूट्यूब चैनल बना लें सेलिब्रिटी बन जाए, रेटिंग बढ़ेगी, आप अर्न करेंगे आपको घर बैठे पैसा आ रहा है। लेकिन इसका इवेंचुअल इम्पैक्ट क्या है? आप क्या हो रहे हैं? गैर तालीम याफ्ता, गैर तरबियत याफ्ता, बगैर विजन के चलना। विजन क्या फोकस कर दिया है? चैनल बनाऊंगा, रेटिंग हाई करूंगा ताकि मोनेटाइज करवाऊंगा, इतने पैसे आए, डिजिटल मार्केटिंग सीख लूंगा, SEO करना सीख लूंगा, वर्चुअल असिस्टेंट बन जाऊंगा, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर लूंगा, ग्राफिक डिजाइनर बन जाऊंगा, इतना अर्न करना शुरू कर दूंगा। ये इसका विजन हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? उसका विजन हो गया। जब इस विजन से वो बढ़ रहा है तो उसके माने पहले की चीजें वो मानता परस सोसाइटी का एक मेन कॉम्पोनेंट इंटीग्रेट हो चुका है। जब ये अभी हो गया तो उसके बच्चे क्या होंगे? आपकी नस्ल इस्लाम आपको किसी वैल्यूज पर रखना चाहता है। और ये सिस्टम इमर्ज किया गया है, एक तो आपको एक वक्त आएगा कि तालीम आप बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं बगैर मैट्रिक किए हुए सिर्फ एक स्किल सीख के डॉलर पे अर्न कर सकता हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है कि बेसिकली रोजाना यूनिवर्सिटी जाऊं, असाइनमेंट जमा कराऊं, झिड़कियां सुनूं, आने जाने के पैसे अलग लगेंगे, फौरी अलग हो रही, इतने घंटे पढ़ना ही पड़ रहा है, और फिर क्या मिलेगा? 30-40 हज़ार की नौकरी से बेहतर ये नहीं कि मैं बगैर पढ़े ज्यादा कमा सकता हूँ। लेकिन इवेंचुअल इफेक्ट क्या निकलेगा 30 साल बाद? आपके माशरे के अंदर फिर मेजोरिटी 80-90% उन अपराध की होगी जो बगैर तालीम के साथ। लॉजिक देखिए आपने बनाने के सिस्टम, कि ऐसा सिस्टम दे दो कि उसको कोई डिनाई ना करे, क्योंकि सबको आजकल महंगाई है, सब पैसे के चक्कर में फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। आप 6 महीने के स्किल सीखे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, आपको $2,000-4,000 आराम से घर बैठे कर सकते हैं अगर आपको अच्छी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आती है। लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ निकलेगा? 20 साल बाद पता लगेगा। ठीक है ना, बड़ा मीडिया के बहुत सारे लोग बोलने गए शायद फ्री लांसिंग प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट नहीं, लेकिन इस्तेफादा करें आप उस प्लेटफॉर्म की वजह से अपनी आने वाली नस्लों को किसी गहराई या खाई में ना डालें। आपने फ्रीलांसिंग करने करें लेकिन अपना जो स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम है उसको साथ रखें। ठीक है ना, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, स्टूडेंट्स से डिस्कशन रहती है, तो अब अप्रोच भी डेवलप हो गई। क्या करना फायदा 5 साल पढ़ के, 4 साल की डिग्री लिए क्या फायदा? वो हमारा दोस्त है, इंटर के बाद उसने मसलन वर्चुअल असिस्टेंट कोर्स किया 6 महीने के अंदर, अब वो सर उसकी US फॉर्म के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है, $1,200 मिलते हैं उसको, जैसे इंटर पास है, इंग्लिश अच्छी है। क्योंकि जब ये अप्रोच इग्नाइट करेगी जो वेस्टर्नाइजेशन ने आपको जो ब्रेन ड्रेन कर रहा है, ये सब बाहर जाना चाह रहे हैं, बाहर जाने की जो अभी वबा फैली है ऐसे थोड़ी डेवलप हुई है, क्रिएटेड है, इसको करवाएगा कि आपके यूथ को ब्रेन ड्रेन करें। ठीक है ना, वो खबरें पढ़ते रहते होंगे क्या हुआ इस टाइम 7 लाख पासपोर्ट पेंडिंग पर है, क्योंकि इतनी तेजी से पासपोर्ट ऑफिस के अंदर पासपोर्ट अप्लाई हुए हैं कि उनकी मशीनें काम है प्रिंटिंग के लिए, कि जितने एप्लीकेशन आ चुकी हैं तो बैकलॉग चल रहा है इस वक्त पासपोर्ट की प्रिंटिंग का, इतने तेजी से लोग जो है वो बाहर जाने के लिए बेचैन बैठे, इस सब साजिश है। ठीक है ना, तो अपीशन के अहदाफ जो है वो बड़े क्रिटिकल हैं, और वो सब तरबियत से रिलेटेड थे, क्योंकि हमारे माशरे में तरबियत साजी न मदारिस ने की मादर, ना जो वो इदारों ने की जो कि मदती इदारे हैं, और जारी बात है स्कूल में तरबियत तो है वक्त पहले ही खुदाफिज भी हो चुके हैं। तो कोई और पॉइंट नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट से हमारा जो चीजें पूछी थी ये बेसिकली इसी का पार्ट है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और ये चीजें आपको प्रैक्टिकली अडॉप्ट करने में आसानी हो। और जैसे हमने बात की कि ये सारी चीजें जो है वो एक सेशन के अंदर कवर अप नहीं होंगे, लिहाजा कुछ पार्ट हम आज बयान करेंगे। तो आज जो पार्ट बयान करेंगे वो टिप्स से मुताल्लिक होगा, तकरीबन कुछ प्रैक्टिकल टिप 12 के करीब जो है वो बयान करेंगे, अगर वो भी सारी ठीक है, वरना फिर जो है वो एटलीस्ट जहाँ तक कवर हो ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम जो उसको हम कवर अप करेंगे। एंड उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में हम ये कोशिश करेंगे कि आपको ये सिखाया समझाया क्लैरिफाई किया जाए कि बच्चा किस एज में क्या सोचता है और आपने कैसे डील करना है, यानी डेवलपमेंट साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड एज वाइज, किस एज में जो है वो उसके अंदर क्या क्या थॉट प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। ये जो आपने गुफ्तगू की है दैट वॉज नॉट इररेलेवेंट, इट्स टोटली रेलेवेंट विद द टॉपिक। थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्म के लिए किया ताकि आप लोग इंगेज रहें, एंड देन आपकी ही मुशाहदात जो आपने बयान किए थे वही पॉइंट्स को हम ऐसे ऐसे यहाँ पर आप कोरिलेट करेंगे। अच्छा जनाब चलिए बारो, सबसे पहले चीज जो हम यहाँ बैठे हुए हैं वो इसलिए बैठे हैं कि हमें पता लग सके कि बेसिकली बच्चों से डील कैसे करना है, उनकी अच्छी अपब्रिंगिंग जो है वो कैसे होगी। तो जो हमारे ब्रादर ने सबसे पहले जुमला इस्तेमाल किया था जो भी मेरे भी मेमोरी में है कि हर बच्चा जो है वो यूनिक होता है और माहौल भी, तो बिल्कुल आपको ये समझना पड़ेगा अगर आपके 5 औलादें अंदर में आपको आता ही हैं तो सब के सब एक नहीं है। इल्म नफ्सियात के लिहाज से इंसान की जो टाइप्स होती हैं उसे 4 अकसाम में डिवाइड किया गया है और उन 4 से मिली 4 और सब पर्सनलिटी टाइप स्प्लिट हो गया। तो और जो भी अगर किसी इंसान को जब हम स्कैन करते हैं तो 16 पर्सनलिटी टाइप हमारे सामने आती है। तो आपको अगर उसकी डिटेल्स ना पता हो एटलीस्ट आपको बेसिक अपनी औलादों की नफ्सियात को रीड करना का इल्म कम से कम बेसिक लेवल पर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चे की नफ्सियात को नहीं समझ पाएंगे तो तरबियत कैसे करेंगे। आसान लफ्जों में अगर डॉक्टर के पास जो पेशेंट आया है डॉक्टर के पास नॉलेज इतनी नहीं थी कि जो दर्द के साथ आया है सर दर्द लेके आया है तो सर दर्द की कई अकसाम हो सकती है। सर दर्द इस वजह से हो सकता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, सर दर्द इसलिए हो सकता है कि बेसिकली आपकी आई कमजोर हो रही है आंखें कमजोर हो रही है, दर्द इसलिए हो सकता है कि बेसिकली आप तो कोई ट्यूमर ग्रो कर रहे हो ब्रेन के अंदर, सर दर्द इसलिए हो सकता है कि बेसिकली कोई लाइट हेमरेज हुआ हो ब्रेन के अंदर स्मॉल मैसेज ब्रस्ट की गई हो वो पेंट कर रही हो, डिफरेंट डिसीज कैंसर होते हैं डिफरेंट पैथोलॉजीज होती हैं जो कि ब्रेन में एग्जिस्ट करती है। तो एक अच्छे कंसल्टेंट काम क्या होता है कि राइट डायग्नोस करें, क्योंकि जब हम डायग्नोसिस के बाद अभी मरला क्या है ट्रीटमेंट करना है, तो रॉन्ग डायग्नोसिस लीडिंग टू अ रॉन्ग ट्रीटमेंट। तो बच्चों की नफ्सियात को अगर आपने राइटली जज नहीं किया यू कैन नॉट डील द किड इन अ राइट फैशन, जिसका इवेंचुअल इफेक्ट निकलेगा हम सोसाइटी में देख रहे हैं। तो हर बच्चा यूनिक होता है, यूनिक के माने ये कि बेसिकली उसकी नफ्सियात के अंदर हमने बात की 16 सब टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज बयान की गई हैं, इसके अंदर डिफरेंट उनके एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसके माने ये नहीं कि जो कैटेगरी 4 के अंदर मौजूद है तो सबके अंदर सेम यही चीज होगी, हाँ कुछ कॉमन फीचर होते हैं इसकी पर्सनैलिटी के जो कि ऑलमोस्ट सब में मिलेंगे, लेकिन कुछ इसके अंदर स्पेसिफिक फीचर होते हैं जो आपने आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज द पेरेंट्स आर द वन हू इज विद द किड ऑल द टाइम, एटलीस्ट मदर सिंस बर्थ बिफोर बर्थ आफ्टर बर्थ वो बच्चे के सबसे ज्यादा करीब होती है सबसे ज्यादा पास होती है, क्योंकि फादर हो सकता है कि जॉब करने 8-10 घंटे बाहर जाए लेकिन मदर इज ऑल टूगेदर विद द किड। तो उसको अपना मेजर रोल प्ले करने के लिए ये तो बताओ कि भाई बच्चा मेरा किस नौजत का है किस टाइप का है क्या किस वे में इसके बिहेवियर जा रहा है, अगर वो डेविएट कर रहा है तो मैं आइडेंटिफाई कर सक रही हूँ कि डेविएशन आ रही है, अगर डेविएशन आ रही आइडेंटिफाई कर ले तो मुझे पता है कि इस डेविएशन को डील किस तरह कर रहे हैं इसका सोल्यूशन क्या है, अगर ये चीज़ें नहीं है फिर मसला है, क्योंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें न बताई जाती हैं न सिखाई जाती हैं न समझाई जाती हैं। और ये मरहला इसीलिए कहाँ से शुरू होता है सिलेक्शन ऑफ स्पाउस से, कि जब आप एक स्कूल में भी जाते हैं किसी टीचर को रखते हैं किसी इदारे में जाते हैं किसी एम्प्लॉय को रखते हैं तो क्या करते हैं उसकी एक ट्रेनिंग होती है ठीक है, या प्रोबेशन पीरियड होता है ताकि उसको कुछ सिखा दिया जाए बता दिया जाए उसको एवेल्युएट कर लिया जाए। और हमारे यहाँ चूंकि जब शादियाँ होती हैं तो क्या होती हैं जॉब सिक्योर घर अपना लड़की देखने में ऐसी है, लड़की गवर्नमेंट जॉब है तो बेहतरीन है, बस ये पॉइंट्स। तो जब हम उन कोर वैल्यूज को स्किप कर देंगे तो उसका एवेंचुअल इम्पैक्ट क्या निकलेगा? आप मैरिज मींस इज ब्रिंगिंग अप अ न्यू जनरेशन, एक नई नस्ल को लाने के लिए कोई तरीके का पैगाम ही नहीं दिया। सिलेक्शन में क्या पैगाम है ये देखना, ये चार पांच चीजें देख लें एंड दैट्स ऑल। और कुछ ऐसे हैं कि जो और एक स्टेप आगे की, मतलब ये भी दे इस्तखारा देख लो, इस्तखारे पे अगर शादियां होती मुझे ये बताइए यहाँ बैठे हुए कितने अफराद हैं जिनकी शादी इस्तखारे के साथ ही हुई है। और इस वक्त अनऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स हमारी कम्युनिटी का ये है कि जो डिवोर्स रेट इज मोर देन 50%, और जो जितना जितना यानी इस्लामिक एरिया है, मतलब मैं मिसाल दे देता हूँ आपको, गो एंड चेक, मुझे पता हाइएस्ट डिवोर्स रेट इज मुझे पता, सबसे ज़्यादा मदारिस कहाँ इस वक्त, बच्चों बड़ों औरतों बूढ़ों 24 साल के जितने भी 365 दिन से लेके एक्टिविटीज जितनी माहौल की कहीं नहीं होती, हाइएस्ट डिवोर्स रेट। रीजन वही नहीं, कोर पॉइंट पे काम नहीं किया एंड देन फिर उन्हें इसी चीज़ को देखते हुए अभी रिसेंट पॉइंट बता दूँ मैं कि वहाँ पर जवान के इतनी फैसिलिटी मौजूद है, उन्हें साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए बताता था, एक क्लिनिकल पूरा पैनल बना है उनका भी, उसके अंदर वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी है। उन्होंने काम किया पैचअप करने का कि जहाँ पर अभी डिवोर्स की नौबत नहीं है लेकिन बोथ पार्टीज आर लाइक थिंकिंग टू अप्लाई फॉर द डिवोर्स, उनको जरा एक तो 2 साल की वर्किंग, अब तो उनके पास रजिस्टर्ड केस इज मोर देन 100 और 2 साल की वर्किंग के बाद सिर्फ 6 लोगों को रीयूनाइट करने में कामयाब हुआ। अंदाजा लगा रहे हो रीजन, फिर तरबियत को हमने साइड पे रखा हुआ है क्योंकि हमें पता ही कि तरबियत करनी क्या है। तो ये पहला अनुमान क्योंकि आपके पेरेंट्स हैं, अब आप इस फेज से गुजरेंगे दोबारा, कौन सा फेज, यानी आपके बच्चे अब बड़े होंगे जब वो शादियां करने जाएंगे तो वो चीज़ अब आप जहन में रखिएगा कि शादियां करते वक्त उसको ट्रेन तो करें कि आफ्टर मैरिज क्या मसाइल हैं, क्या इशूज आ सकते हैं, कौन सी चीज़ों को तुम्हें डोमिनेट रखना है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, किन पे पॉइंट्स कोई बताता है, अगर बताता है तो शायद 5 मिनट के अंदर बता के, जबकि हम क्या बोलते हैं जब आप किसी जगह जाते हैं ना ट्रेनिंग फेज के अंदर ट्रेन किया जाता है बोलो से, कई चीज़ की ट्रेनिंग होती है कहीं, जो जितना सेंसिटिव होता है आपको सोल्जर बनाया जाता है, जब कितने साल की ट्रेनिंग होती है पी एम ए का 2 ईयर्स, तब जाके वो इस काबिल होता है कि वो महाजन ढंग पर हमारा हो सके। आज जो हम देख रहे हैं हमारे मरहले पे आ गई है, ऐसे ही आ गई, 40-45 साल मार खाते रहे, जब थोड़ा समझे तो फिर 2006 में कारनामा किया, 2006 से लेके अब 2023 के अंदर जो चीज हुई कैसे हुई है, हर लेवल की तरबियत हुई, जब तरबियत हुई तो नतीजे ही निकला है, फिर दुनिया हैरान रही कि भाई ये कैसे हो सारे, इस वजह से इस पॉइंट को समझे कि ये तरबियत कोई मामूली चीज़ नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि ये जो यानी ये चंद सेशन की बात नहीं है, यानी इसमें जो मेरे फॉर एग्जाम्पल एक एक स्किल सेट की हम बात करें तो एक एक स्किल सेट के ऊपर, जैसे हम मिसाल दें कि अगर बिहेवियरल इश्यूज आ गए हैं तो बिहेवियर के इश्यूज के अंदर अगर उसने जिद्दी बन पद को काउंटर करने के लिए पूरा एक सेशन होगा होना चाहिए टेक्निकली। अगर बच्चा जो है वो आपकी बात ओबे नहीं कर रहा है, डिसओबीडियंस आ रही है, तो ओबीडियंस पे तो बहुत सारा काम करना पड़ेगा, हो सकता है कि कई सेशन लगे, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि डिसओबीडियंस क्रिएट होती कैसे, स्टेप वन क्या है, स्टेप टू क्या है, और आपको सिंगुलैरिटी स्टेज पे आ गए। तो ऑल टुगेदर नेट से बेसिकली इट्स अ वेरी यूनिक फिनोमेना जिसको आपने डील करना है, बिकॉज यू आर अ पेरेंट, तो भी आपकी जिम्मेदारी है, आप राइट चीज है, राइट पर्सन है, राइट थिंग है, चूज करेगा वॉट इज बेस्ट फॉर योर चाइल्ड, ठीक है। लेकिन बेस्ट हर कोई पेरेंट्स लिखना चाहता है, लेकिन सवाल यह कि उसे पता है कि बेस्ट होता क्या है, किसी का बेस्ट ये कि मेरा बच्चा बड़े होके ऑक्सफर्ड के अंदर एडमिशन लेके ये बन जाए, किसी का बेस्ट ये है कि मेरा बच्चा मुल्क की टॉप यूनिवर्सिटी में पोजिशन ले ले, दिट इज बेस्ट, तो ये भी देखना पड़ेगा आपका बेस्ट का क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आपने नासराने इमाम बनने के लिए बच्चों को अपने तैयार करना है, तो आपको वो वाला बेस्ट डेफिनेशन पता है। सवाल नंबर एक, यस। अगर यस है, अगला स्टेप उसको अर्थिंग तकाजे के साथ अप्लाई करने के लिए खुद को आमादा किया हुआ है या नहीं। आप अप्लाई नहीं कर सकते वो ये जो आप नहीं कर रहे हो उसको बोले नहीं कर रहे, क्योंकि वो ऑल टूगेदर ऑल द टाइम जो एज है कि हम किस बच्चों की बात करें, बड़ों की बात नहीं करें, बड़ों को तो आप कह सकते हैं कि भाई ये काम अच्छा है इस तरह कर लो, क्योंकि वो अब अपने छोड़ो उस मंजिल पर है कि वो खुद क्या कर सकता है, एनालाइज एंड एवोल्यूएट करके नतीजा ले सकता है। इस एज में जो यहाँ छोटी सी बच्ची बैठी हुई है इसके अंदर ऐसी टेंडेंसी अभी डेवलप नहीं हुई है ज़हनी लिहाज से, वो क्या कर सकती है, सिर्फ कॉपी। ठीक है, जब आप कॉपी, आप देखना आजकल काफी शेयर करते हैं वीडियो, छोटी सी 3 साल की बच्ची है वो मुसलसल नहा सुना रही है डेट, क्यों उस घर का माहौल ये होगा कि वो नहा पढ़ने वाले होंगे, नहा सुनने वाले होंगे, इसलिए बच्ची जो है वो अगर आप अपने मोबाइल पे ऑन करते हो फौरन, 1.5 साल का बच्चा जिसको पता नहीं कि लफ्ज क्या है क्या करेगा, तो उसने देखा है तो भाई मातम जब होता है तो बीट पे सीने पे तुम कॉपी कर रहा है, अल्फाज रिपीट करेगा, जो आप बोलेंगे वो रिपीट करेगा। तो ये चीजें सबसे पहले लेवल पर जो आपको अगर इल्म था तो इल्म का खुद अमादा थे, अमादा से मुराद क्या थे कि आपने उसमें कितना तैयार किया हुआ। अगर ये काम नहीं किया हुआ तो फिर ये जिसे हम एक मुहावरा है कि बेसिकली तुम लेवे ना फूलिश पैराडाइज, फिर हम अहमकों की दुनिया या जन्नत में है कि जो हम नहीं कर रहे वो एक्सपेक्ट करें कि वो करेगा या करेगी, नॉट पॉसिबल। हाँ एक तो मिसाल मिल जाए, जिसकी हमेशा टोटैलिटी की बात होती है, 1% लेस देन 1% आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, हम एक्सेप्शंस पे नहीं जा रहे, हम बात कर रहे हैं जर्नल जर्नलाइजेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले टिप गालबन अगर नजर आ रही है क्योंकि इसमें लाइट ज्यादा है तो इस वजह से मैं उसका रीड आउट कर देता हूँ। सबसे पहले जो हमने बात की थी, जो टिप नंबर 1 डील करने के एतबार से अपने चाइल्ड को उनके बिहेवियर रिलेटेड इश्यूज की सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने एक्सप्लेन की 2-3 दफा, विच इज कॉपी मॉडल, यानी आप बच्चे को क्या कॉपी करवाना चाहते हैं। वो यूएसबी में लैपटॉप में मैंने प्रेजेंटेशन बनाई थी तो मैं लेके यूएसबी में आया हूँ, ये मुमकिन था कि लैपटॉप में जो प्रेजेंटेशन बनाई गई थी ऑडियो इसमें ट्रांसफर हुई वो अलग, यही बच्चा समझ लें, आप उनके लिए वो लैपटॉप की डिवाइस हार्ड डिस्क है कि जिसमें वो बार बार अपनी यूएसबी लगाते हैं, देखते हैं कि मेरे अब्बा मेरी अम्मा मेरे घर वाले क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेमोरी की यूएसबी कॉपी सेम रहे उनमें, तो आपको वो करना पड़ेगा जो वो आप देखना चाहते हो। इसको हम कहते हैं कि लव एंड लॉजिक, उनसे सिंपथाइज होकर बात करेंगे वो भी उसी तरह बात करेगा, उसे चिल्ला के बात करेंगे उनके अंदर आदत पड़ेगी। अच्छा थोड़े से मैं क्लेरिफाई कर दूं, जब आप चिल्लाते हैं और बिल्कुल यंग एज के अंदर लाइक 1 ईयर 2-3 ईयर बातें हमारे पास खत्म में बर्दाश्त हो चुकी है, हम बर्दाश्त खत्म कर चुके हैं, तो लिहाजा जल्दी हाइपर हो जाते हैं, तो एक तरफ तो वो उसने ये कॉपी किया, लेकिन माहिर नफ्सियात के मुताबिक जब आप बच्चे पे चीखते हैं तो बच्चे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फिनोमेना होते हैं, साइंटिफिक वर्डिंग को छोड़ के सिर्फ उसका निचोड़ बता रहा हूँ कि क्या क्या कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, कौन से रिसेप्टर उस पर इम्पैक्ट करते हैं, उसका एंड इम्पैक्ट क्या निकलता है, उसके अंदर सबसे पहली जो चीज़ डेवलप हुई क्या होगा, गुस्सा। और फिर आपके जहन में अगर अहादीस हों सारी की जो गुस्से से मुतालिक हों, जब आप गुस्सा करते हैं तो आप अपनी पर्सनैलिटी के न जाने किन किन एट्रीब्यूट्स को खत्म कर दो, तो बच्चे के अंदर जो इग्नाइट होने का फिनोमेना डेवलप हो रहा है, गुस्सा किधर से स्टार्ट हो रहा है, हमारे वहां के चिल्लाने से। ठीक है, अहादीस बेताशा इस पर, जिस घर में बुलंद आवाज गुफ्तगू की जाती है तो घर से फरिश्ते रहमत के दूर हो जाते हैं। इसको जब हम कोरिलेट करते जाएंगे, इस तरह के जितने सारे आदेश हैं जब आप उसे कोरिलेट करेंगे तब आपको प्रश्न समझ जाएंगे क्यों इस नाम ने इसको इतना मना किया, क्यों गुस्से को हराम करार दिया गया, जहां तक है खुदा चुनना रही है, वो कहता है कि अगर गुस्से में तलाक दी गई है तो तलाक इनवैलिड है। वो तो चाहता है जोड़े, और हम क्या कर रहे हैं, हम हर वो काम कर रहे हैं जो डिसइंटीग्रेट कर रहा है हमारी पर्सनैलिटी के अंदर अवेलेबल स्किल्स को डिसइंटीग्रेट कर रहा है, हमारे घर के अंदर मौजूद अफराद को डिसइंटीग्रेट कर रहा है, एंड विद इन अ लार्जर स्केल जो फैमिली और उम्मत है वो डिसइंटीग्रेट हो रही है। क्यों? गुस्सा। ट्रस्ट के एक मेंबर का दूसरे मेंबर से नहीं बनी, गुस्सा हुआ, लड़का है, अलग हो, बोला इसको आज यहां से निकालो, इसको यहां से लॉबिंग होगी, जो अच्छे काम को कर रहा था वो भी जब वो वहां से निकलेगा तो उसके माने होगी फाइंड आउट रीजन, गुस्सा। जो हमने बात की डिवोर्स उठाई है, क्यों? उसने ये कह दिया, उसने वो कहा, उसने यूं पलट के कहा, सास नहीं है, बहू नहीं है, शौहर नहीं है, बीवी नहीं है, एंड इस अब हम साथ नहीं रह सकते। क्यों? गुस्सा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी मिशन आगे बेहतर हो, इन जिम्मेदारियों जैसे कि आप इस चीज को समझे, लेकिन उससे पहले खुद पे एंगर मैनेजमेंट को अप्लाई करना होगा। अब एंगर मैनेजमेंट पूरा सेपरेट टॉपिक है, ठीक है, अगर मौका मिला खुदा ने तौफीक दी तो एंगर मैनेजमेंट कैसे होगी, क्योंकि पूरा अलग से डिटेल टॉपिक है, हाउ टू कंट्रोल योर एंगर। गुस्सा जब आप गुस्सा करते हैं ना, आपके चेहरे पर जो मसल्स हैं, जब आप मुस्कुराते हैं ना, तो आपके चेहरे की 7 से लेके 12 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। जब आप गुस्सा करते हैं तो मोर देन 30 मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। क्या मतलब इस बात का? जितनी ज्यादा मसल इस्तेमाल होगी उतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, उतना जल्दी आप एजिंग में जाएंगे। जो जवान रहना चाहते हैं उनके लिए भी टेप है, बिल्कुल खबर थी, गुस्सा खत्म करते हैं, ना कोई क्रीम लगाना है, ना लोशन लगाना है, ना बोटेक्स लगवाना है, ना एंटी रिंकल क्रीम अप्लाई करनी है। रिंकल्स पड़ने का वन ऑफ द रीजन इज बेसिकली जब आप गुस्से में आते हैं तो आपकी जो फेशियल मसल्स होती हैं सारी, इनके अंदर एटीपी होते हैं, ये कंज्यूम हो जाएंगे। तो जब ये डिप्लीशन की तरफ चले जाते हैं तो जल्दी जोड़ना पड़ेंगे, जल्दी बूढ़े नजर आएंगे। तो अगर जवान रहना है तो फिर क्या करें, ठीक है, मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए आप लोगों की एक वाक्य सुना देता हूँ, ताकि वैसा माहौल भी तब्दील हो और आप लोग अगर सो रहे तो जाग जाएं। बनी मूसा सुना देते हैं। तो जनाब मूसा के जमाने से पहले का बात है, बनी इसराइल 3 भाई थे वहां पर, और तीनों ही आलिम थे और जाहिद भी थे, लेकिन जो गांव था बेसिकली बड़ा, एक तो जुहला का गांव था, फिर तंग भी करते, तो जो इल्म दोस्त लोग होते हैं फिर वो खामोशी और इस तरह की चीज़ों को पसंद करते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि भाई ये गांव वाले जो है वो उन्होंने तकलीफ की, वो बताया है, वो नहीं सीखा। तो बहरहाल तीनों भाई जो है वो बिल्कुल गाँव के साथ एक पहाड़ भी था, तो तीनों ने अपना डिफरेंट लेवल्स पर अपने घर अपनी फैमिली को लेके वहाँ चले गए। अब सीन ये होता था कि जब कोई किसी को मसला दरपेश होता था तो जारी बात है गाँव वाले सोल्यूशन के लिए कहाँ जाएंगे, उन्हीं बाकी वो आलिम भी थे और हकीमाना गुफ्तगू करते थे। तो एक दफे बड़ा संगीन मसला दरपेश हुआ गाँव वालों को, वो गए मिल के, अब जारी बात गाँव है, कोई उस जमाने के अंदर कोई ड्रोन तो है नहीं कि बैठे और पहुँच गए फॉरन, वहाँ पर टाइम लगता था, पहुँचे वहाँ थक गए सारे। उस भाई के पास गए, देखा जनाब बिल्कुल ज़ईफ, कमर झुक रही है, तो पूछा कि भाई क्या मसला है, उसने बोला कि ये मसला है गांव वाले परेशान, क्या करें। सोचा उसने, सर गुजारा, बोला कि मेरे इल्म के मुताबिक जो है ये इसका सलूशन तो मेरे पास नहीं है, हाँ एक तजवीज़ दे सकता हूँ कि मुझसे ज़्यादा जो इल्म है वो मेरे मंझले भाई का है, यानी दरमियाने भाई का, यकीन में उसका जवाब दे देगा, तुम जाओ। लेकिन वो पहाड़ के और बुलंदी पर रहता है, हर पार्टल सोल्यूशन चाहिए था, उन्होंने दोबारा हिम्मत बांधी, पहुंचे ऊपर, देखा झोपड़ी नजर आ रही है, खुश हो गए, चलो और जवाब मिल जाएगा। अब जब देखा उन्होंने तो उसको थोड़ा सा यानी शशुपंच में, क्योंकि नीचे वाला भाई तो सबसे बड़ा था, तीनों भाइयों में सबसे बड़ा, उससे नीचे मपिंग था, सबसे बड़ा भाई था, उसकी जब कमर झुकी और सफेद दाढ़ी सफेद बाल तो होंगे ना, जो अफराद होंगे तो वो किस तरह होंगे। तो ऊपर गए तो पहले मुलाकात की, पूछा सवाल ये वो, तो उसने सर खुजाया, बोले कि इसका जवाब जो है वो मेरे पास नहीं है। अच्छा मैंने रिवर्स कर लिया, सबसे नीचे रहता था वो, सबसे छोटा था, तो वो बिल्कुल बूढ़ा हो चुका था, मंझला वाले में था उससे थोड़ा सा यंग एज में था, तो जब उसने भी इजहार किया कि भाई माजरत की इल्म जो मेरा है आपके मसले का हल मेरे पास नहीं है, लेकिन यकीनन जो मेरा बड़ा भाई है वो आपके इस मसले का जवाब दे देगा। अच्छा, अब फिर पहाड़ चढ़े, थक गए। अब जब थक के पहुंचे, देखा एक बाल जवान बैठा हुआ है, उसके पास गए कि बोला बड़े दूर से आए, अपने वालिद साहब को बुलाओ। तो बोला क्या वालिद साहब, तो मेरे तो अरसा हुआ वालिद साहब को इस दुनिया से गए हुए। अच्छा, वो चूंकि सबसे बड़ा भाई था इसलिए वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो देखने में बिल्कुल जवान लग रहा। तो उसने बोला कि तुम अपना मसला बताओ, क्या प्रॉब्लम है। उसने बोला कि नीचे से आ रहे हैं तुम्हारे जो सबसे छोटे भाई थे जो बिल्कुल बूढ़े हो चुके हैं, उन्होंने बोला कि मसले का नहीं, ऊपर जाओ। ऊपर गए, उसने बोला कि तुम्हारे पास आओ तो हम तुम्हारे फादर, मतलब वही मैं ही हूँ। अब वो अपना मसला भूल गए। तो बोला पहले तो आप ये बताएं कि क्या माजरा, उसूलन तो जो सबसे छोटा भाई है वो सबसे ज़्यादा यंग नज़र आना चाहिए और आप सबसे बड़े उम्र में तो आप सबसे बूढ़े नज़र आने चाहिए, जबकि ये मामला बिल्कुल बरक्स है। तो मुस्कराया और जवाब दिया उसने। अब जवाब का लुबा जवाब बता रहा हूँ, उसके अंदर तीन चार और पॉइंट्स हैं। उसमें जो सबसे मेजर पॉइंट्स है वो ये है कि मैं अपने जौजा को बर्दाश्त करता हूँ। नहीं समझा, जारी बात है, घर है, आपस में लड़ाइयाँ होती हैं। तो उसने बताया कि जो सबसे ज़्यादा झगड़ालू है वो मेरी ही जौजा है, लेकिन मैं हमेशा तहम्मुल मिजाजी से काम लेता हूँ और मैं कोई सी बात का बुरा नहीं मानता, जबकि मेरे जो भाई हैं जो मंझला वाला है उसमें बर्दाश्त है लेकिन थोड़ी सी कम है, लेकिन जो बिल्कुल छोटा है उसके अंदर बर्दाश्त नहीं थी, इसलिए वो तुम्हें सबसे ज़्यादा बूढ़ा नजर आया। तो इसके मानने के अगर आप यंग नजर आना चाहते हैं, कोशिश करें बर्दाश्त पैदा करने की, गुस्सा कम करने की, तो ऑटोमेटिक खुद भी जवान नजर आएंगे। तो ये फ्री की टिप है कि जिसने अगर कॉस्मेटिक सर्जन के पास जाके स्किन की सर्जरी, झुर्रियों को हटाना, बोटॉक्स के इंजेक्शन लगवाना, इन सबसे बचना है तो एक बार मिलकर शुरुआत पढ़ लें। ठीक है, तो मॉडल बेसिकली लव एंड लॉजिक मॉडल, कि आप उसके साथ इजहार शफ़क़त करें। जब आप गुस्से में जाएंगे तो गुस्से में क्यों आते हैं, जब एक चीज तकरार करती है गुस्से का पूरा सर्किट है। कैसे आता है कि जब आप बार बार एक चीज की तकरार देखते हैं और वो चीज रिपीट होती है आपकी मना करने के बावजूद। अभी सेकेंड मॉडल है कि मना से क्या मुराद है, अभी हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे, विच इज नो मॉडल। सही है, खुलासा ही निकला, बच्चे से शफ़क़त, उसके सामने अगर कोई चीज प्रेजेंट करनी है तो हमने यहाँ लॉजिक लिखा है। अब इस लॉजिक को जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे स्टेप वाइज बताएंगे कि लॉजिक अप्लाई किस एज से करनी है और लॉजिक का लेवल क्या रखना है, 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स अबव पे। ये नहीं कि एक साल के बच्चे को लॉजिक समझाएं कि हम लोग फला मसलक से हैं और जो अमर करेंगे वो सारा तकलीद के दरमियान हो और तकलीद इस मर्जे की हो और उस मर्जे का को लॉजिक नहीं देनी। अगर वो कोई गंदगी फैला रहा है तो उसको नजाजत का कॉन्सेप्ट देने के लिए आप ये तकलीद के मसाइल बयान नहीं करेंगे, उसका लेवल नहीं है। ठीक है, तो क्या करना चाहिए वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा जब हम एज वाइज बात करेंगे। ठीक है, सेकेंड मॉडल, बहुत सारी बीमारियां आपके हेल्थ इश्यूज की वजह से हैं। अब हेल्थ जो है वो टू टाइम, कौन से हेल्थ बताएं, कौन से हेल्थ, बिल्कुल फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ। और हमारे यहां मेंटल हेल्थ पे अब थोड़ा सा अवेयरनेस पे काम स्टार्ट हुआ है, इसी वजह से चीजें थोड़ी सी प्रोपगेट हो रही है मीडिया वगैरह के ऊपर, क्योंकि मेंटल हेल्थ बाकायदा बाहर तो इसके डिपार्टमेंट्स हैं मेंटल हेल्थ के, हमारे यहाँ चूंकि रविश बिल्कुल अलग थी। हम समझते हैं कि शायद मेंटल का मतलब है साइको होना है या पागल होना है, जबकि जिस तरह फिजिकल हेल्थ होती है आदमी, तरह मेंटल हेल्थ है। आपके दिल गुर्दे दिमाग जब ये खराब होते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाके इसको करेक्ट करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, सर्जरी कराते हैं। सिमिलरली मेंटल हेल्थ को आप समझें, ये समथिंग वेरी सीरियस, क्योंकि अगर आपका दिमाग अपने सही वर्किंग फंक्शनल स्टेट में नहीं होगा, इवेंचुअल इम्पैक्ट आपका सारे बॉडी फंक्शंस पे निकलेगा। कोई डायबिटिक क्यों हो रही है या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्यों डेवलप हो रहा है, इसके मायने की मेंटल इलनेस। ब्लड प्रेशर कॉमन रीजन, स्ट्रेस यानी मेंटल हेल्थ। फला 16-17 साल की पेशेंट आते हैं हमारे पास विद डिप्रेशन, 16-17 साल, ये कहीं और की बात नहीं हो रही, इसी कराची की हम बात कर रहे हैं जो हम खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्या हो जाए कि 16-17 साल का बच्चा, और वो भी चले वो तो एक क्लास निकाल लें आप जो डिफेंस क्लिफ्टन वाली है, हम तो बात कर रहे हैं इन्हीं जगहों पर जहाँ पर दुशिया पॉकेट्स है, वहां के बच्चे आ रहे हैं जिनको ये इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये चीजें सीरियस है, अलार्मिंग है, ये कोई मामूली अनुमान नहीं है, ये जिम्मेदारी है, ये इदारों की जिम्मेदारी है, ट्रस्ट वालों की जिम्मेदारी है कि जिस तरह आप साल भर प्लान आउट करते हैं, अभी अया में पार्ट में आएंगे ना, शहर आता में शुरू हुआ कि हमारी प्लानिंग पहले से करेंगे, जिस आलिम को आपने हमसा पढ़वाना है उससे बात पहले तय हो जाएगी, उसका बोलते रहकर प्रोपगेट कर रहे हैं, कब फला टाइम ये पढ़ेंगे, कब फला टाइम वो पढ़ेंगे, उसी से कोऑर्डिनेट किया आपने नवा खान मर्शिया खान, इन चीजों पे क्यों नहीं काम कर रहे हैं? अगर आपने किसी आलिम को बुलाना भी है तो कम से कम उससे वो अनामीद निकलवाए उसके इल्म से के जो आपको इस मौजूदा मसाइल से निकाल के आपकी हालत को अपग्रेड कर सके। तो दोनों चीजें शामिल है, आपकी फिजिकल हेल्थ भी, आपकी मेंटल हेल्थ भी, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी, ये आलिम का काम होना चाहिए, ना कि आप एक भड़कीला सा मौजूद है ताकि रेटिंग आपकी बढ़े कि वो तो माशाल्लाह। ये जिम्मेदारी है अफराद की, मिल्लत की, कौम की, हर इदारे की, चाहे वो माफिया जो है नॉट, ये सब चीजों पे हम तो हेल्थ के अंदर बेसिकली आपको बहुत सारे इश्यूज जो डेवलप हो रहे हैं जो उनकी जंक फूड से हो रहे हैं, क्या देना है क्या नहीं देना, हर कोई आगे कंप्लेन करता है दांत गायब होते हैं बच्चे की, चॉकलेट खाने का आदम है, स्वीट खाने का आदम। सवाल बाय बर्थ था उसके अंदर ये, या उसके अंदर इतनी सलाहियत थी कि वो शॉप पे जाती, डेढ़ साल, दो साल, तीन साल, चार साल का बच्चा के शॉप पर खुद जाता है, उसके पास पैसे कहाँ से आते हैं, कोई शॉप खुद खरीद रहा होगा, दे रहा है ना, कौन दे रहा है, मैं और अभी दे रहा पहले तो मुझे अपना शौक चेंज करना है कि बेसिकली भाई ये इसके लिए मुनासिब नहीं है। आप जो डाइट दे रहे हैं बहुत सारी पैथोलॉजीज 20 साल बाद जाके उसके मैदे के अंदर असर कौन करेगी, उसको पाइल्स का पेशेंट बना देगी, उसको दीगर उन्मनात की अमराज आएंगे। किस वजह से आएंगे, क्योंकि हमें खुद नहीं मालूम था, हाँ भाई ठीक है बच्चा दिल कर रहा था जो चॉकलेट पकड़ा दी, वो पॉइंट पकड़ा दिया। हेल्दी डाइट क्या है, हेल्दी डाइट के अंदर हर वो चीज जो नेचुरल है, तो खुलासा कि भाई आप पूरी हुई सब्जी के नाम बताएं, नहीं, जो चीज भी नेचुरल पैराडाइम के अंदर आपको मिलती है समझ लें हेल्थ के लिए, जो चीज भी आर्टिफिशियल है और अगर आप रेगुलर यूज कर रहे हैं चाहे वो नमक ही क्यों ना हो, ये जितना क्रिस्टलाइन नमक है ये आपकी किडनियां फेल कर रहा है, क्यों आप पर एंड स्टेज पेरिटोनाइटिस के पेशेंट है कॉमनली आ रहे हैं, ट्रांसप्लांट रेट क्यों बढ़ते जा रहे हैं, इसी वजह से कि बेसिकली वी आर इन हैबिट ऑफ टेकिंग आर्टिफिशियल सॉल्ट एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर, जो आप जो इवन जो डायबिटिक पेशेंट कहते हैं जिनाब यहाँ सुपराल उपराल ले लें सारी है, तो नहीं भाई ये भी आपको डैमेज कर रही है, स्वीटनर लेने आर्टिफिशियल स्वीटनर ऑलवेज डेंजरस, उन्हें तो बेचना है इसलिए आपको वो पॉइंट्स नहीं बताते हैं बेसिकली, और जो लोग इस पर काम करते हैं वो रिसर्चेस पर तो छपती नहीं है, क्योंकि अगर छप गई तो फिर बेदारी आई, फिर क्यों सबसे ज्यादा इस तरह के अमराज के पेशेंट खुद अमरीका में जो जहाँ पर सबसे ज्यादा सख्ती स्टैंडर्ड पे दवाओं की फूड की वो इदारा इतना सख्त है कि आप कोई चीज बेच नहीं सकते जब तक वो अप्रूवल ना दे इदारा के भाई ये वाली चीज सही थी, आप इस तबूर के बाद जिस कंटेनर में रखा है इस कंटेनर का अप्रूवल मिलता है कि इस कंटेनर में इसको आप फ्रोजन फूड रख सकते हैं या नहीं रख सकते, उसको रखने के लिए जो उसने अंदर कोटिंग लगाई है प्रिजर्वेटिव की वो तक टेस्ट होती है कि हाँ भाई ये सही होगी, तो उसके बावजूद सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट, उसके बावजूद सबसे ज्यादा कार्डियोवास्कुलर पेशेंट, सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट क्यों है, कुछ है ना, जब क्वालिटी स्टैंडर्ड है, क्वालिटी चेक है, हर चीज स्टैंडर्ड वाली है, दोनों बड़ी वाली चीजें नहीं मिलती, या तो गटर का पानी वाला पानी हम पी लेते हैं, न जाने अदरक के बदले जो है वो केमिकल वाली अदरक हमें मिल रही होती है, जो मसाले होते हैं वो लकड़ी का बुरादा पीस के उसको डाई करके दे रहे होते हैं, जो आप काला मिर्च इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली ऊंट की खली है जिसको डामर में डाल के उसमें फ्लेवर डाल दिया जाता है काली मिर्च को, आप बोलते हैं काली मिर्च है, हम तो ये सब खा रहे हैं। अगर हम में हो तो फिर भी जवाब बनता है कि भाई यहाँ पर तो है दो नंबर, फिजा वो आलूदा, रिजा वो आलूदा, माहौल वो आलूदा, ऊपर से घरेलू मसाइल टेंशन ये वो सब, तो यहाँ तो सबसे ज्यादा परेशानियां सब हैं, तो वहां क्यों है भाई? वहां तो कहते हैं ना भाई जो इमिग्रेट करके क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर जान का खदशा यहाँ रहता है, और हम बात के इसलिए जा रहे हैं वहां पर ताकि हम सिक्योर रह सके, वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस होता है, तो क्वालिटी ऑफ एनहांस है तो मेरी डिजीज क्यों इतनी सारी सवाल। हर साल अमरीका के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो डेथ होती है इससे एक्सीडेंट से मोर देन 1 लाख, 10 लाख डेथ होती है कैंसर से, 10 लाख अंदाजा लगा रहे हैं हम, तो क्या फायदा है इतनी क्वालिटी इतनी स्टैंडर्ड इतनी चीजें वावेल मचाने का कि हम बड़ा, तो इसके माने सब व्हाइट कॉलर क्राइम है, व्हाइट कॉलर मेडिकल क्राइम, ठीक है ना, तो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और हम तो क्योंकि मसमलक है, लक्कड़ हजम पत्थर हजम, जब आखिरी स्टेज कैंसर होती है फिर पता लगता है, फिर रोते हैं दुआ करते हैं शायद बच जाए, फिर ठीक है, तो अच्छी गजा खिलाएं, वो खिलाएं इसके लिए हेल्दी हो, क्योंकि ये इवेंचुअल इम्पैक्ट करेगी, कि जब आप गजा खाते हैं तो ये कुछ चीज़ें बनाती हैं जिसको मेटाबोलाइट्स कहते हैं, ये मेटाबोलाइट आपके ऑर्गन में जाके बैठ जाते हैं, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइफ टाइम आपको डिफरेंट किसी भी टॉक्सिसिटी आती है, फिर आपको डिफरेंट डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं, कुछ मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट होते हैं सिस्टम के अंदर। अगर आप ग्लूटामेट एक अमीनो एसिड है और ब्रेन का न्यूरोट्रांसमीटर भी है, सबसे ज्यादा ग्लूटामेट आपका टमाटर में होता है, कितने मजे से हम वो फ्रेंच फ्राइज खिला रहे हैं बच्चों को, अभी तो हम उसके नहीं जा रहे हैं जिस तेल में तला जा रहा है उसका हालत क्या हो रही है, पॉलीअनसैचुरेटेड कार्सिनोजेन जो उसके अंदर बनते हैं उसको हम खा रहे हैं, सिर्फ केचप के बाद जो डाल के दे रहा है, केचप के 5 लीटर की बॉटल कितने की है, जो ठेले पे इधर उधर आप खा रहे होते हैं मायोनीज और ये सब, कितने की 5 लीटर की बॉटल पता है आपको, कहीं 140 रुपए की है, कहीं 160 रुपए की है, टमाटर भी कितने का चल रहा है अच्छी क्वालिटी का 220-240, केचप निकालेंगे तो इसके मानेंगे शायद 8 किलो टमाटर में से आपको 4 लीटर केचप निकले, तो ये 140 की बॉटल के साथ कैसे बेच रहा है, माने केचप बोलो क्या है, स्टार्च है और उसमें क्या मिला हुआ है, वो कलर मिलाया हुआ है जो कलर आप बेसिकली कपड़े रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो जमाना खत्म हो गया, पहले की खवातीन डाई एंड डाई एंड डाई इन्हें खुद ही घर के अंदर दुपट्टों को रंगती थी, कपड़ों को रंगती थी, तो जमाना चला गया सर, क्या हो गई है रेडीमेड, जो फूड कलर होता है वो अलग होता है, जो कलरिंग एजेंट जो आप डिफरेंट जगह इस्तेमाल करते हैं ये ग्रेड अलग होता है, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं, क्योंकि कैंसर कॉज करता है, तो इन तमाम चटनियों वटनियों जितनी भी आप खा रहे होते हैं इसके अंदर वो ग्रेड का कलर इस्तेमाल किया जाता है, जो फूड ग्रेड का ही नहीं, वो ग्रेड का जो बेसिकली आप पेंट के अंदर और चीजों में इस्तेमाल करते हैं पॉलिश के अंदर, समझ रहे हैं आप, तो हमको वो खा रहे हैं चिप्स विप्स फ्रेंच फ्राइज बर्गर शॉर्मा, वो शॉर्मा के साथ एक शॉर्मा फ्री चिकन बोनलेस 840 रुपए की है, वो शॉर्मा दे रहे हैं 120 रुपए का आपको, दो के बाद एक फ्री, ये कॉस्ट निकालें तो 80 रुपए का एक पड़ेगा चीज, कहां से, और हम बच्चे को खुद 200 रुपए देते हैं यूनिवर्सिटी के खा लेने बेटा, क्योंकि मैं बता नहीं सकती थक गई ये थक जाती 200 रुपए पकड़ाए और जाओ बेटा वो कैंटीन में बैठ के भाई आ रहा है, फिर जब आ रहा है हम पेट में दर्द आए हैं डायग्नोज हुई हैं आपके, इस टाइम इस एज ब्रैकेट के अंदर स्टमक अल्सर इज वेरी प्रिवेलेंट, ये सब रीजन था कौन कर रहा है, मैं थोड़ा सा सबसे पहली लुबर लबाब तब्दीली खुद को एजुकेट करेंगे तो बच्चे की तरबियत कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट बेसिक जो हमने बात की थी जो डिफाइन करते हैं अभी, बच्चे के साथ वक्त गुजारना, इसको हम कहते हैं कि मेकिंग टाइम, अगेन ये जर्नलाइज पॉइंट बता रहा हूं, इसको जब हम एज वाइज जाएंगे तो अलग अलग बताएंगे कि किस बच्चे के साथ कैसे टाइम गुजारते हैं। आज का लेक्चर एक जर्नलाइज है जिसमें जर्नलिस्ट बताएंगे। तो टिप नंबर थ्री इज मेकिंग टाइम। क्या माने इसके? इसके मायने ये है कि बेसिकली जो बच्चा है ही नीड्स यू, उसने दुनिया नहीं देखी। तो दुनिया कौन है? आप है। अब आप समझ लें कि दुनिया, आप बड़े हैं, आपको अंदाजा कि दुनिया कितनी बड़ी है। तो अब अंदाजा लगा रहे कि इसके जहन में जो दुनिया वो आप और ये घर है। तो जो इसको बनाएंगे वो बनेगा। घर के अंदर आप और आपका माहौल अच्छा बनाएंगे वो अच्छा बनेगा। मुस्कुराता हुआ बनाएंगे मुस्कुराएगा, चीखने वाला बनाएंगे वो चीखेगा। अतः अंधुदार बनाएंगे तो सबसे पहले ने जो बात की थी और ने बहुत सादा था सूर्य रसूलुल्लाह दे चुके हैं। साथ साथ क्या है बादशाह? बादशाह क्या करता है? He does give orders। वो भी कर, हाँ कैसे करें नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे इसकी भी तरीके। ये नहीं कि बच्चा बोले कि नहीं मुझे बिजली के सॉकेट में उंगली डालनी है और ऑन करके आप ही नहीं बोले आप बादशाह सलामत जी बिस्मिल्ला। लेकिन ये नहीं कहना पकड़े यूं घसीटना है उसको। There is a way। यानी बादशाह से जब आप कोई वजीर जब ये देखता है कि जो बादशाह ने कलाम किया है ये नुकसान देह है तो क्या करेगा? अरे बादशाह सलामत क्या हो गया आप पागल हो गए ऐसे बोलेगा वो। There is a way out। ताकि बादशाह को उसकी लॉजिक भी अपील करे और फिर जो सख्त चलते हैं क्या करते हैं फिर वो तुमने इतना अच्छा जवाब दिया है कि अचरती भी तुम्हारी तो वो एटीट्यूड अपनाएंगे तो फिर ये अतात गुजार बनेगा। ठीक है। और एक जुमला ऐड करते हैं यहाँ पर तरबियत के खुद मेहमान से यानी अपनी तरबियत के कि अगर हम अतात गुजार बनना चाह रहे हैं खुदा के अतात की एबिलिटी पैदा करनी हो। क्यों नहीं मानते ईमान की रसूल की अल्लाह की? खुद भी अतात गुजार जो हम नहीं। ठीक है ना। बहुत सारी बातें जो तलख हैं लेकिन नहीं कहना चाह रहे लेकिन खुद के अंदर अतात गुजारी डेवलप करनी पड़ेगी। जब आप अब्द खुदा बनेंगे तो ऑटोमेटिक स्किल आपके अंदर से रिफ्लेक्ट होगी और जब रिफ्लेक्ट होगी तो फिर सामने वाले को भी उसका इम्पैक्ट मिलेगा। जो फलसफा है पता मेहराब का क्या है? पूरी साइंटिफिक नॉलेज के लिए कैन एनीबडी टेल जो ये मेहराब का फलसफा है मस्जिद के अंदर और जो शराइत इमाम है इमामत के लिए क्यों है हमारे घर में? कोई ब्रादर सोहर इस फलसफे के साइंटिफिक अंदाज में रोशनी डालना चाहेगा? साइंस के स्टूडेंट है कोई लाइक मास्टर्स बैचलर्स समवन फ्रॉम बायोलॉजिकल साइंसेस? चलिए जी आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने हर वो चीज रखी है जो बेसिकली नेचर में भी पूरी जबरदस्त बहस है साइंस और इंसान के ऊपर। आपके अंदर आयरन मौजूद है, आपके अंदर कैल्शियम मौजूद है, आपके अंदर सोडियम मौजूद है, आपके अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल पावर है आप 40 बल्ब जला सकते हैं, आपके अंदर इतनी आयरन मौजूद है कि आप 1 इंच की जनाब 12 किले बना सकते हैं आपकी बॉडी से। ठीक है। आपकी जो ब्रेन की वायरिंग है ना ये जो आप देख रहे हैं वायरिंग तो आपकी ब्रेन जिनकी सिग्नलिंग हो रही है इसके अंदर जो सेल होता है जब आप इसको सेल को एक लंबाई में करते हैं दुनिया के लिए 4 चक्कर लग सकते हैं कितना डायमीटर होता है जितना इसकी लेंथ होती है। इंसानी लास्ट लेक्चर में मेमोरी में बताया था कि तुम बैठे हुए थे। ठीक है सही है आप बैठे हुए थे। ठीक है याद है कितने हैं ह्यूमन ब्रेन के अंदर टोटल न्यूरॉन्स? कितने दिमाग? ये दीवार है, दीवार किससे मिलकर बनी है? ईटों से। पूछा जाए कि भाई इस बिल्डिंग में कितनी ईटें लगी हैं तो जो दिमाग मिलकर बना होता है उसके सेल्स सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं। कितने न्यूरॉन्स हैं इंसानी दिमाग के एक एडल्ट के अंदर? बच्चे में अलग ज्यादा होते हैं, एडल्ट की बात करते हैं हम और आप से मिलियंस। कितने मिलियन? 100 मिलियन। तो एवरेज है बेसिकली तकरीबन 80 से 100 बिलियंस 100 अरब खलिये हैं। लाइफ टाइम के सिरे बाद इसका एवरेज पर्सन 8 से 10% इस्तेमाल करता है, बाकी खाली नहीं कर रहे आप इस्तेमाल इस्तेमाल करें। जो बड़े बड़े आप जिसको हम इल्म नफ्सियात की इस्तेलाह में कहते हैं जब बच्चे की हम बात करेंगे 4 किस्म के बच्चे होते हैं कुल जहन बच्चे इंटेलिजेंट उसमें कहते हैं 15 बच्चे
15 यानी जो सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, तो 55 में उनके एट्रीब्यूट अलग होते हैं, तो इन पे अगर आपने वर्किंग कर ली तो फिर ये माशरे में शहीद मुदारी भी बन सकते हैं। अगर आपकी तरबियत में फौजा आता तो फिर हो सकता है कि ये एक्स वाई जेड बन जाए, इतना है ना। तो आपको खुद तशखीस देने अपने बच्चे का अलग, तो उसको 15 पैदा किया था, यह आपकी ना अहली थी, ला इल्मी थी, तरबियत का फौदान था कि जिसने मुदारी बनना था वो एक्स वाई जेड बन गया। कैसी भी फैमिली है सैयद, यूएस के अंदर स्टार्टिंग में माशाल्लाह बच्चा जनाब बड़ा कोई से मोहब्बत करना, इतना यूएस आर्मी में चला गया, इराक डिप्यूट हुआ, कई महीने रहा, आए थे इराक गांधी हुआ, ये द स्टेटमेंट है, आई प्राउड माय सेल्फ टू सर्व माय कंट्री। ये होता समझे मैंने क्या कहा, ये समझ में आई बात, यहाँ की फैमिली सेटल है अमरीका, सैयद फैमिली थी, बहरल इतना सब जाना चाहते हैं ना, तो जब जाएंगे तो ये इम्पैक्ट्स निकलेंगे उसके। सर्व किया आर्मी में उनके बेटे का, और यूएस आर्मी की बात ईरान जाकर फौरी थी, तो उसकी भी ड्यूटी लगी, तो जब वहाँ से वापस आए तो उसको बोला कि आई एम प्राउड माई सेल्फ, आई एम सर्विंग माई कंट्री, वहाँ मार रहे मोमिनीन को और यहाँ के आई एम सर्विंग माई, तो ये नहीं होगा रीजन तो होगा। तो ये चीज बड़ी अहम है, इन चीजों को इतना मामूली ना लें, ये जो चीजें हैं ये आपके कंधों पे ऐसा बोझ है आज के दौर के अंदर के, जिसका मदावा अगर नहीं किया बेदार हो के आमद भी मैशर के अंदर भी आलम बरज़ख में भी खूब झेलना होगा। आज के दौर में हर चीज इस पर मौजूद है, ये कह ही नहीं सकते। अभी लास्ट वीक एक फैमिली से डिस्कशन हो रही थी, बाल वो मसाइल चल रहे हैं आजकल बहुत सारे, तभी नमाज क्यों नहीं पढ़ते, वो खातून कहती है टाइम ही नहीं, तीन बच्चे टाइम भी नहीं मिलता, क्यों जो अपनी जॉब को ही लंबी है कि ना उनके जब भी कॉन्टेक्ट किया कि भाई ये मसाइल चल रहे हैं, बच्चों से फुर्सत नहीं मिलती तो टाइम कैसे निकलेगा।
अच्छा, तीसरा टिप बेसिकली जो आपको बता रहे हैं मेकिंग टाइम, मेकिंग टाइम के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आप किड क्या चाहता है, देखना करना दो अलग चीज़ हैं। और जैसे कि अभी हम ब्रेक के अंदर जिन खवातीन ने आके जो गुफ्तगू की उसके अंदर सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट यही था, सोशल मीडिया से जान कैसे छुटाई जाए। तो मेकिंग टाइम के माने सबसे पहले ये चीज़ है कि जब आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें उस वक्त कोई गैजेट आपके हाथ में और उसके हाथ में ना हो। अच्छा, आई माई सेल्फ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यही कि अब अगर आधे घंटे भी अगर रखा है हमने तो उसके बाद जो मैसेजेस और चीज़ों के, अच्छा बाज तो चले ग्रुप के मैसेज, बाज इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं जिसमें आपको पेशेंट रिलेटेड कोई और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स जो कि अर्जेंट होते हैं, तो ये एक थोड़ा सा मसला है हम लोगों के साथ कि अगर आप उस लेवल पे नहीं वर्क कर रहे हैं तो ठीक है, फिर तो आप मोबाइल साइड पे रख दें। तो बाद जब हमारे लिए इतना टाइम स्पेयर करना जो है वो इस लिहाज से कि मतलब बैठे तो ज़रूर हैं बच्चों के साथ लेकिन मोबाइल के साथ बैठे हैं, क्योंकि इस दौरान जो है वो चीज़ें बाज अर्जेंट भी आ जाती हैं, बाज ऐसी चीज़ें होती हैं जो इमरजेंसी क्यूरीज होती हैं जिसको आपको फ़ौरन आंसर करना होता है। ये थोड़ा सा मसला हम लोगों के साथ कि भाई हम इसको कट ऑफ नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग हाउसवाइफ हैं, जो ऑफिस से बाहर चुके, कोई और ऐसा मसला नहीं है, उनको क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ, बच्चों ने उनके साथ गुजारने के लिए उस वक्त आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होनी चाहिए। भले बाज जगहों के अंदर और बाज अफराद के अंदर ने देखा है कि इस हद तक अब वो काम कर रहे हैं कि उस वक्त, क्योंकि हो सकता है कि वो किसी के अंडर में काम करते हो तो बॉस किसी वक्त भी कॉल कर सकता है, मोबाइल स्विच ऑफ कर देते हैं ताकि वो मरा ना आए, क्योंकि आपके पास दो ही ऑप्शन हो गए, या कॉल बजेगी तो उठाएंगे नहीं, या क्या करेंगे कट करेंगे, कट करेंगे तब भी मसला, उठाएंगे नहीं तो वो, उससे बेहतर क्या करते हैं पावर ऑफ कर दें। ये एक टेक्निक है कि अगर आप थोड़े से जहां भी काम करते हैं वो आप नीचे पोस्ट पर हैं तो आप उसको ऑफ कर दें आधे घंटे के लिए, आधे घंटे ही बहुत है। अगर आप स्टार्टिंग के अंदर क्वालिटी टाइम को डेवलप करने के लिए 30 मिनट स्पेंड कर रहे हैं पर डे, बिलीव में कि इट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट। यानी बजाय 24 घंटे में से आधे घंटे हमें थोड़े से मामूली रखने, लेकिन ये 30 मिनट मामूली नहीं है, बच्चे की ग्रोथ डेवलपमेंट के एतबार से ह्यूज हैं। और बिलखसूस जितनी छोटी एज का बच्चा है इतना ज़्यादा ये 30 मिनट्स को इम्पैक्ट देंगे। जितना बड़ा होता जाएगा हो सकता है कि जो चीज़ हम 30 मिनट्स में इससे एक्वायर, यानी इसको कोई चीज़ डेवलप कराने के लिए हमें 30 मिनट देने पड़ रहे हैं, तो जितना बड़ा हो जाता है चाइल्ड, जैसे मैं बात की कुछ जो 13, 14, 15 ईयर्स के हैं, तो हो सकता है आपको 10 मिनट बैठ के सिर्फ गुफ्तगू करनी है अपने उस औलाद के साथ। बस क्या करना है, गुफ्तगू। जो अगली टिप भी आएगी कि बेसिकली जब हम बात करते हैं पीयर प्रेशरिंग वगैरह की, उसको डील करने का आइडियल वे क्या है, इस कम्युनिकेशन को सेट एंड टॉक। बेटा क्या मसला, क्यों ऐसा सोच रहे हो, आज यूनिवर्सिटी से आए थे तो मुझे तुम्हारे अंदर ये तब्दीली नज़र आई है, कोई मसला है वहाँ पर, किसी ने तंग किया है, कोई ऐसा इशू है, शेयर विद मी। तो जो आप ये काम करेंगे, क्योंकि मुश्किल है इस लिहाज से कि हम जिस लाइफ के अंदर अभी पैटर्न बन चुका है हमारा, तो हम ये काम नहीं कर पा रहे हैं, मतलब दिस इज़ फैक्ट। जैसे मैंने खुद एडमिट किया आई माई सेल्फ के बेसिकली ये मसला है मेरे साथ कि मैं कट डाउन करना चाहूँ तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एमरजेंसी रिलेटेड होती हैं, जो कि फ़ौरन प्रॉम्प्टली आंसर करने की होती हैं, तो ये एक इशू रहता है। तो जिसमें ज़्यादा तो बच्चे भी कहते हैं कि आप बैठे भी हैं तो मोबाइल साइड पे क्यों नहीं रख रहे, दिस इज़ फैक्ट। तो ये सब चीज़ें हैं बहरहाल, लेकिन हमें इसी में ही सर्वाइव करना है। आइडियल वे तो हम नहीं बना सकते, लेकिन एप्रोप्रिएट वे तो बना सकते हैं। तो ट्राई इन स्टार्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फॉर योर फैमिली एंड किड्स, ठीक है। अब मेकिंग टाइम के अंदर आपका जो भी सेटअप हो घर का, अब वो चाहे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हो आप या आप सेपरेट सिस्टम में रहते हो, दोनों सिस्टम के डायनेमिक्स अलग अलग है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। आपकी भाई की फैमिली भी उसी घर में और आपकी फैमिली से, उनके भी दो बच्चे हैं और आपके भी दो, ऑलमोस्ट एज ब्रैकेट भी सेम है, वो किसी और जगह पढ़ता है और आपका बच्चा किसी और जगह पढ़ता है, आप इंतलाबी सोच के हैं, वो जिद्दी इंतलाबी सोच का है, मरहला है, भाई भाई हैं, ये तो नहीं कर सकते अलग करने, काटें, लड़े रोना, ना। डील कैसे करना है, यही सारी जिहाद और यही सारी जंग है। इसके डायनेमिक्स को समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए समझना, उस पर अमल करना और उसके सलूशन को इख्तियार करना फिर आसान हो जाएगा। छोटी सी मिसाल अकली दलील दे देता हूँ कि जिसको सारी दुनिया पावरफुल कहे, सुपर पावर कहे, इतने हथियार हों, सब नेटो उसी के पास हो, सब जगह की फंडिंग भी उसी के पास हो, और उसकी चालें नाकाम से नाकाम पे नाकाम पे नाकाम हो रही हो, कैसे? इसके मायने के हम और आप उस लेवल की ना जंग में, ना हमारे सामने वो प्रेशर्स हैं जो उनको झेल लें, ना उनके सामने इतना बड़ा महाज है कि मुल्क के मुल्क सपोर्ट में मौजूद हैं हर लिहाज से, मीडिया के लिहाज से, दिफाई लिहाज से, बजट के लिहाज से, फिज़िकल सपोर्ट के लिहाज से। तो जब ये मामला इतने संगीन हमारे साथ नहीं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते अपने घरों में? इस कोर मैसेज को बहुत अच्छी तरह गौर करिएगा। इसके मायने के जब आप मैदान नबर्ज में होते हैं, आप मैदान जिहाद में होते हैं, तो फिर आपको बहुत सारी चीज़ों को तर्क करना पड़ता है। इसलिए रसूल अल्लाह ने जो ताबीर की है, क्यों ताबीर की है कि तुम जिहाद असगर से वापस आ रहे हो, अब जिहाद अकबर की तैयारी कर दो। असाब से जिहाद अकबर यानी क्या, का नफ्स का जिहाद। तो जो हम तरबियत की बात करें, तरबियत के इस्लामी इस्तेलाह के अंदर असल टर्मिनोलॉजी क्या कहलाएगी, तरबियत नफ्स। तरबियत नफ्स खुद हमारी, तरबियत नफ्स खुद हमारी औलाद की। वो माहौल, वो तरबियत याफ्ता रूहानी मानवी माहौल घर के अंदर कब पैदा होगा, जब हम तरबियत साजी के उनवान को समझ सकेंगे। और यही जिहाद अकबर रसूलल्लाह ने इस्तलाहन डिक्लेयर किया है। तो ये अंदाज़ा लगा लें कि जो जहाद अब आप देख रहे हैं, जहाँ पर मिसाइल गिर रहे हो, ये सब चल रहा है, ये सब जिहाद जितना भी संगीन लेवल पहुँच जाए, लेकिन ये कौन सा जिहाद है रसूल की निगाह में, छोटा जिहाद है। असल जिहाद तो नफ्स का है। तो जब उसके लिए कुर्बानियाँ ऐसी हैं, हमारे अफराद, दीगर मिल्लत के अफराद रेडी हैं, आमादा हैं कि जाएँ वहाँ पर अपनी सर्विसेज दें, चाहे जान भी चली जाए। और यहाँ घरों में क्या है, दो लोग मिल के बैठ नहीं सकते, क्योंकि मेंटल लेवल पर हमने उस चीज को परसीव नहीं किया है राइट वे के साथ। अगर फलसफा क्लियर हो जाता कि जहाद क्या है, तरबियत क्या है, नस्ब तरबियत सादी के उन्वान क्या हैं, और नुसरत इमाम का मसलन कोई अगर पूछे कि जो लोग यहाँ से वहाँ आज जाना चाहते हैं गजा के मुसलमानों के लिए कोई इमदाद या मदद के लिए किस जज्बे के तहत है, क्या बताएंगे? एक तो जज्बे के निचले लेवल के चूँकि वो इंसान और मुसलमान है इसलिए जा रहे हैं, लेकिन इससे असल अदब क्या है पता कि बेसिकली ये आखिरी मरला है कि जिसके बाद जिसका ततिमा जिसका एंड कहाँ पर होगा, दूर पे होगा ना। तो हम अपने आप को उस लेवल पे जाके कनेक्ट करने की कोशिश करना अगर चाह रहे हैं तो घरों के अंदर बैठ के तरबियत करना किसने रोका? तो हम अटके कहाँ पर हैं? हम अटके माद्यात में, हम अटके हैं अपने ज़िंदगी के उन उमूर पे, चूंकि ज़िंदगी के इन उमूर को हमने उस निगाह से नहीं देखा जिस निगाह से इमाम ने बयान किया है कि जिसके लिए दीगर हदीस के अंदर कहीं इमाम ने बयान किया है कि तुम्हारी ज़िंदगी का कम से कम एवज़, यानी अगर तुम इसे सेल आउट करो तो उसका कम से कम एवज़ क्या? जन्नत है। तो जन्नत कैसे मिलती है, जन्नत में क्या होता है, जन्नत जाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी है कि आप बुराइयों से बचें अच्छाई करें, हम क्यों नहीं कर रहे? इसके माने के हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, हमने उसको अपने ऊपर तारी नहीं किया। तारी करने के लिए पहला मरला ही होता है इरादा, इरादे के बाद उसको एनालाइज करना और फिर अमल पे लेके जाना। तो जब घरों के अंदर हम इस चीज़ को समझ जाएंगे कि भाई ये उससे बड़ा मुआरका है नुसरत ईमान के लिए, जहाँ पर उस महाज पे जाके लड़ना आप जिसको एक महवर समझ रहे हैं उससे बड़ा महवर हमारे घरों का महवर है। यही अफराद तैयार होंगे ही तो ही जहूर होगा, नहीं होगा तो हमारी कोताही है और हो रही है, ठीक है ना। है बाजू उलमा अक्सर बयान करते हैं जिन लोगों को मुकाशफात होते हैं तो वो कहाँ अक्सर के बेसिकली इस तरह के ताबीरात बयान हुई हैं कि मैं रोता हूँ, यानी इमाम की बात, जिन लोगों ने मुकाशफे में इमाम को देखा या ख्वाब में देखा बयान किया है इस गिले को इमाम ने, क्या कि मैं अफसोस करता हूँ, मैं रोता हूँ कि मैं तो तुम्हारे लिए इतना तड़प रहा हूँ और तुम्हारे दिल में मेरे लिए तड़प नहीं है। क्यों नहीं है? अमल के लिहाज। बात मकसद क्या, यानी अमल वो नहीं है कि जिसके ज़रिए ये साबित हो सके तुम मेरे लिए वाकई। वाक़ अक्सर जो उलमा बयान करते हैं बहुत सारे तकरार के साथ कि भाई इमाम ने दरवाज़ा खटखटाया, देखा कि घर तो अभी इस काबिल नहीं, इमाम को अल्लाह छोड़ के मैं घर सेट कर लूँ। कई वाकयात इस तरह के जिसमें आइम्मा ने इशारे दिए कि आपका इस दौर के अंदर तकाजा क्या होना चाहिए था और कहाँ बैठे हैं, किस चीज़ को भूल बैठे हैं, यानी सब कुछ याद है और नहीं याद तो वो जो आखिरी हुज्जत है। अच्छा, याद से मुराद वो जुमला अदा करना नहीं है कि दुआए फर्ज पढ़ ली तो इसके माने कि मैंने इमाम को याद किया है, नहीं, असल मैवर तो ये कि तैयारी है या नहीं है। तो ये सब तैयारी जो लेक्चर्स भी हम दे रहे हैं इनके इवेंचुअल हदफ ये होने चाहिए कि हम तरबियत के उन अनावीन को इस पे अप्लाई करें कि जिन अनावीन के बाद ऐसी तरबियत याफ्ता नस्ल, ऐसा तरबियत याफ्ता बच्चा और बच्ची आए कि जो बेसिकली राह इमाम के लिए आमादा और तैयार थी। हमें नहीं मालूम कि ज़रूर आज होगा, ये 100,000 साल बाद होगा, लेकिन कम से कम ये ज़रूर अंदाज़ा है कि जो भी तैयार होगा वो शामिल होगा, वो चाहे आज मरा हो या जब इमाम आएंगे अब से 1,000 साल 2,000 साल बाद, नहीं मालूम, जो आमादा होंगे तैयार होंगे उस लश्कर में होंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप क्वालिटी टाइम के अंदर इन चीज़ों को मरबूत करें। उसको करने के लिए क्या चीज़ है कि ये सब चीज़ें जो क्या हैं आपको इस्तेफादे के लिए भी हैं और सोए इस्तेफादे के लिए भी हैं। फेसबुक इस्तेमाल करना है तो फेसबुक पे आप अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं, दीनी हकाइक को भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ योर चॉइस कि आपने इससे अपना फेम हासिल करना है। अभी हम तो बुरे आस्पेक्ट पे नहीं जा रहे कि जो बेहयाई और दीगर चीज़ें वो तो आप छोड़ दें, वो तो एक्सक्लूडेड है। हम इससे बात कर रहे हैं कि एक चीज़ है जिससे इस्तेफादा करना और एक चीज़ है सही इस्तेफादा करना और एक चीज़ है मौसर इस्तेफादा करना। अभी सारे मराइल हैं, जिस तरह हर चीज़ का एक लेवल होता है। आप इल्म के दर्जात को हासिल करते हैं, पहले आप नर्सरी प्राइमरी सेकेंडरी, फिर आप कॉलेज लेवल, देन यूनिवर्सिटी में बैचलर्स मास्टर्स देन डॉक्टरेट लेवल, ठीक है, लेवल्स है ना सारे। इसी तरह जब हम इस्तेफादे की बात करते हैं, इस्तेफादे की भी लेवल्स हैं। तो आप इस्तेफादे किस लेवल का हासिल करें, उस लेवल का इस्तेफादा करेंगे, आपको ऑक्सफर्ड में एडमिशन मिल जाए, बिल्कुल बिस्मिल्ला, हम नहीं करेंगे, बुरा ही है। लेकिन क्या इसलिए भेजा गया था कि आप ऑक्सफर्ड में जाने के लिए स्कॉलरशिप और दीगर चीज़ों को करके इससे चैट जीपीटी पे जाके मोटिवेशन लेटर कैसे लिखना है और एप्लीकेशन को इफेक्टिवली कैसे बनाना है, बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं, अच्छी चीज़ है। लेकिन इससे आला महबर भी तो है, इसके ज़रिए कौम के अंदर वो चीज़ों को कि जो इमाम के लिए कारामद होंगी उसको प्रोपेगेट करना, फेक प्रोपेगेंडा को डिफेंड करना कि भाई ये चीज़ें जिस प्रोपेगेट की जा रही है आजकल न्यूज़ के अंदर, ये फेक है। आप ये अवेयरनेस दिला सकते हैं लेकिन उसे खुद अवेयर होना चाहिए। ये सब चीज़ें आपके इसके अंदर स्ट्रेटेजी का पार्ट होनी चाहिए। फोर्थ रूट बेसिकली इज़ आ, ये वो पॉइंट है जिसमें हम नेक्स्ट उसमें थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियोस के साथ गुफ्तगू करेंगे, जो कि अक्सर अभी कुछ लेक्चर के बाद पूछा जिन लोगों ने कि क्या करें, तो क्या करें, कैसे बात करें, कैसे रोकें, क्या ऑल्टरनेट दें, दैट इज़ कॉल्ड जो कि टिप नंबर 4 है, इसको हम कहते हैं रूल्स एंड रूटीन। क्या रूटीन होना चाहिए और क्या रूल्स होने चाहिए। जब आप रूल्स देंगे तो अगेन देर आर टू थिंग्स, वन थिंग इज वही जो हम इसको खुद पसंद नहीं करते हैं, नो बडी कम एंड स्टार्ट हैमरिंग मी, आपको अच्छा लगेगा आए और डंडा लेके आपको बोलता रहे कि भाई ये करो, आप पसंद करेंगे ये। जब मैं पसंद नहीं करेंगे नो बडी कम एंड स्टार्ट हैमरिंग एंड डिक्टेटिंग मी कि भाई ये एक सुनूंगा दो सुनूंगा उसके बाद बोलूंगा बस भाई आप अपना काम करें मुझे करने दें, बच्चे के साथ भी यही है। तो कैसे समझाऊं उसे कि बेटा ये गलत चीज़ है, क्या तरीके का होना चाहिए, इसके रूल्स हैं। और रूल्स क्या हैं, वापस बैक एंड पे हम जाएंगे, एक साल की उम्र के अंदर बच्चे के नफ्सियात अलग, 3 साल के अंदर अलग है, 7 साल के अंदर अलग है, 12 साल से अलग है, तो ये समझना है। तो इसलिए मैंने इसको स्प्लिट किया है, फर्स्ट सेशन बेसिकली इज़ अ जर्नलाइज टिप्स, सेकेंड सेशन में फिर हम एज को लेके चलेंगे, एज वाइज बच्चा क्या सोचता है, क्या उसकी नीड्स हैं, और उसको आइडेंटिफाई करके इस एज के रूल्स क्या होने चाहिए, दो साल का है, 2 साल की रूलिंग के 7 साल की रूलिंग, 13 साल की रूलिंग, तीनों में फ़र्क है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है इस एज में और उस एज में, तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। लेकिन फोर्थ जर्नल टिप, यू शुड हैव अ रूल्स एंड अ रूटीन। अगर आपके लाइफ में रूटीन नहीं है, जैसे इमाम अलैहिस्सलाम ने नजुल बलागा में फरमाया कि बेसिकली अपने उम्र को मुनज्जम करो, व्हाट डज इट मींस, यू शुड हैव अ विजन मिशन क्लियर प्लान विद द माइलस्टोन्स, कि ये मैंने किया या नहीं किया, जिसको आज के सिलसिले में बहुत सारी स्किल सेट से ताबीर करते हैं, कि स्किल के अंदर आपके पास टाइम मैनेजमेंट हो, स्किल के अंदर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हों, स्किल के अंदर आपके पास लीडरशिप पोटेंशियल हो, ये सब वो स्किल है जो बेसिकली टेक्निकल टर्म के अंदर ही वो हैं जो आइमा के डिफरेंट बिलखसूस मौला के डिफरेंट फरामीन के अंदर क्लियर उसके रूल्स गोल्डन प्रिंसिपल्स मौजूद हैं, जिसको आज के मगरबी दुनिया ने इसके ऊपर पूरी पूरे सब्जेक्ट्स पे किताबें आई हुई हैं। तो ये गोल्डन रूल, अगर हम वो किताबें पढ़ने का टाइम अगर ना हो और उसके थ्योरीज पे नहीं जाना चाहते, तो सिंपल आइडियल टिप इज बेसिकली स्टार्ट नॉट ओनली जस्ट रीडिंग बट फॉलोइंग द नहजुल बलागा प्रिंसिपल्स। उम्र मुनज़म हो गई, ऑटोमेटिक टाइम मैनेजमेंट हो गई आपकी। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये कि आपने अपने हिस्से को कैटेगराइज कर दिया है, दिस इज फॉर जॉब, दिस इज फॉर इबादत, दिस इज फॉर फैमिली, दैट्स ऑल। लेकिन कैसे, जो मैंने बात की कि फैमिली के टाइम, तो कैसे हो फैमिली के साथ, इस पर भी आइमा की हदीस मौजूद है। तो हमने लव, ये जो टर्म है क्वालिटी टाइम, ये रेस्ट की टर्मिनोलॉजी है बेसिकली, लेकिन ये एक्चुअली इमाम की छठे इमाम की हदीस का एक्सट्रैक्ट है कि अपने फैमिली के साथ खुशगवार वक्त गुजारने के लिए ये 3 काम करो, जिसको वैस में क्वालिटी टाइम के साथ। तो हमारा मसला अलमिया यही है कि हमने अगर सुना मेंबरों से या जिनको थोड़ी बहुत मुताले की आदत थे, सिर्फ मुताला किया, इसकी तदबीक नहीं की, तदबीक के बाद अमल चंद चीज़ों पे करके बोला बरी जिम्मा है। तो बिलीव में अगर किसी को जिसे जिससे इश्क होता है, तो कभी इसकी कैफियत देखी आपने, अगर आप में से भी किसी को जवानी में इश्क हुआ हो, कोरिलेट दैट फेज, तो आपको इल्म और आइमा से वो इश्क हुआ है सवाल, वो जो तड़प होती है अंदर से वो आपको बैठने नहीं देती, ना आपको बोरियत होगी। आजकल लोग पूछ रहे हैं कि भाई मेमोरी का इशू है और पढ़ते हैं दिल नहीं लगता, क्यों? इश्क करेंगे तो दिल लगेगा ना, इल्म से इश्क करेंगे तो किताब पढ़ना आपको बोरिंग नहीं लगेगा। क्यों? बार बार ताकीद की ये मुताले की, तफक्कुर की, तदब्बुर की, मतलब ये तो कुरान की बात कर रहा हूँ, कुरान पुकार कितनी दफ़ा, आई डोंट नो कितनी दफ़ा कुरान में गए तफक्करून या तफक्करून या तदब्बरून या अकलून ताकलून, एक दफ़ा कह रहे काफ़ी है, यानी बताना चाह रहे हैं भाई सोचो पढ़ो उस पर तदब्बुर तफक्कुर अकल इस्तेमाल करो, क्यों नहीं सोचते? कुरान के जुमले हैं सारे। तो कुरान जब चीख चीख के बार बार आपको कह रहे कि भाई सोचो, तो हम अगर बुक पढ़े भी नहीं तो सोच क्यों नहीं रहे, फिक्र क्यों नहीं कर रहे? इमाम खुमैनी से अक्सर पूछा गया कि जो मदारिज इरफान है आपके, इसके अंदर एक जो चीज़ें हाई लेवल अचीव करने की कुछ टिप्स दें, तो उन्होंने एक गोल्डन रूल बताया, वही जो कुरान कह रहा, कुछ नहीं करो बस अपने ज़िंदगी के अंदर रोज़ाना में से, मतलब उनके हयात के अंदर कहा जाता है कि आखिर जब मसरूफ हो गए थे, लेकिन जर्नल उनका एवरेज रहा है कि एक घंटा डेडिकेटेड था सिर्फ खामोशी से बैठ के तफक्कुर करने का, खुद से इर्तिबात कायम करने का, यानी जिस टाइम कोई भी उमूर जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जिस टाइम बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम हो तो क्या करें आप, तो उस जमाने में मोबाइल नहीं था, तो टेक्निकल टर्म के अंदर हम इसको तदबीक करें, तो इस टाइम यानी इमाम खुमैनी बताना चाह रहे हैं कि आप जब बैठे उस माहौल में अंदर, यानी आप और खुदा हो, बस उसके बाद कोई ना हो, फिक्र करें, तदब्बुर करें बुरहान के साथ, बसीरत के साथ, ज़हनी दरीचों के अंदर वो अनावील लेके आए कि जो खलाइक के अंदर उस खालिक ने जितने मौजूदात खल किए हैं, खुद आपका वजूद और वजूद के अंदर जितनी आपकी चीज़ें हैं उस पर तदब्बुर करें, ये कैसे काम कर रहा है, ये मैं देख कैसे रहा हूँ, ये मैं बोल कैसे रहा हूँ, ये लुकमा जो मेरे हाथ में है ये जब लुकमा अंदर जाएगा तो तवानाई कैसे पैदा कर रहा है, किस तरह इससे फजला अलग हो रहा है, तवानाई अलग हो रही है, जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ किस तरह आपकी समातों में जा रही है, तदब्बुर करें हर चीज़ पर। जब तदब्बुर करेंगे आपका राबता, जब हम ऐसे बिल्डिंग में जाते हैं जो बेसमेंट में, तो क्या होता है सिग्नल वीक हो जाते हैं, तो हमारे सिग्नल इस टाइम वीक नहीं है, डिसकनेक्टेड हैं अल्लाह के साथ। नमाज के अंदर भी हम फिज़िकल ज़रूर है, जैसे मोबाइल मेरे पास है, क्या कहता हूँ यार सिग्नल बंद है, तो नमाज के अंदर भी हम नमाजी तो हैं लेकिन सिग्नल नहीं है वहाँ पर, सिग्नल होता तो फिर हालत कुछ और होती। तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल डेवलप करना है उसका राज बेसिकली, और जो बात की गई थी कंसंट्रेशन, अच्छा कंसंट्रेशन अलग चीज़ है, फोकस्ड अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है ना, हम डिफाइन करेंगे इसको बाद में, अभी नहीं। इसको हासिल करने का एक पैरामीटर तदब्बुर है, जिसको सूफिज़्म में तख़लिया कहते हैं, एक्सरसाइज टर्म इसको मेडिटेशन कहते हैं, और इल्मे रवाज के अंदर बेसिकली ये इर्तबात दर खुदा, ठीक है। तो तदब्बुर तफक्कुर तफाहुम बसीरत के साथ चाहे 5 मिनट क्यों ना हो, तो इमाम खुमैनी का जवाब ये था कि चंद लम्हे रोज़ाना निकालें अपने रब से गुफ्तगू करने के लिए, ठीक है ना। गुफ्तगू तो नमाज में भी हो रही है और कुरान में, लेकिन उनसे उनकी मुराद ये थी कि बैठ के खलाइक और मौजूदात पर तदब्बुर करना, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करें आपके अंदर भी। तो यहाँ पर जो रूल्स हैं रूटीन की बात है, रूटीन के अंदर आपने क्या क्या रखा हुआ है, कोई लोग कुछ लोग मैच दें, जैसे मेरे रूटीन के अंदर ये चीज़ मस्ट है कि मैं डेली, चाहे वो अगर दिन में टाइम ना मिले, तो सोने से पहले न्यूज़ ज़रूर चेक करके सोता हूँ, यानी क्या चल रहे हैं हालात वाकयात दुनिया में पाकिस्तान, ठीक है ना। हैबिट है बचपने से, बचपने से मेरा ये मोबाइल का रहेगी, बचपने से मेरी आदत है कि बेसिकली उस ज़माने में अखबार पढ़ते थे रेगुलर, अभी भी आदत है, आप ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है। क्या रूटीन का हिस्सा है, मुताला रूटीन का हिस्सा है, ठीक है ना। जो लोग एग्ज़ाम में पढ़ने के आदि, एग्जाम के बाद क्या करते हैं, किताबें ख़त्म, कोई ताल्लुक अब नहीं है, तो ये वही हैबिट डेवलप कर ले। लेकिन अगर हैबिट ये होती, एग्ज़ाम हो या ना हो, कोई चीज़ देनी है क्विज़ की या नहीं देनी, मुताले की आदत डाल, जब मुताले की आदत पड़ जाएगी, ये वो रूटीन आपकी शख्सियत का ऐसा हिस्सा बनेगा। जो लोग वेस्ट अगर गए हों, आपको ट्रेन के अंदर बसेस के अंदर कमोबेश 80% 85% लोग मिलेंगे, जैसे ही स्टॉप से बस में एंटर हुए, किताब बैग से निकाली, पढ़ना शुरू हो, चाहे बैठे हुए खड़े हों, कल्चर वहाँ डेवलप करवाएगा। चाइना के अंदर तो बकायदा ट्रेन के अंदर कंपार्टमेंट के दरमियान शेल बनाए या किताबें, कि ट्रेन के अंदर अगर आपके पास किताब नहीं तो आप वहाँ से शेल से लेके पढ़ें। बस स्टॉप के अंदर ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ बस स्टॉप के साथ एक साइड फ्री अखबार रोजाना रखे जाते हैं और एक साइड जो है वो शेल बनाए गए हैं बुक्स के लिए। डेवलप हुई ना, तो बच्चा भी पढ़ रहा है, बड़ा भी पढ़ रहा है, बूढ़ा भी पढ़ रहा है, कल्चर डेवलप हुआ है मुताले का, ठीक है। इसलिए जब आप वेस्ट के लोगों की गुफ्तगु सुनते हैं तो उसके अंदर आपको रीजनिंग नज़र आएगी। किस वजह से आई है? मुताले की आदत की वजह से। वो रीजनिंग चाहे किसी भी सब्जेक्ट के अदवार से हो, लेकिन रीजनिंग इज एन स्किल। आपके अंदर रीजनिंग स्किल क्यों नहीं आ रही है कुरान पढ़ने के बावजूद? आप बैठ के मैच का तजिया तो कर लेते हैं, लेकिन अगर बताया जाए कुरान की आयत का तजिया बताएं तो क्यों ब्लैंक हो जाएंगे? इसके मायने के वो रविश इस्लामी डेवलप नहीं कर पाए, रविश दुनिया डेवलप कर ली, ठीक है जनाब। तो ये रूटीन ऐसा होना चाहिए कि जो आपको सेट गाइडलाइन के साथ बच्चों के एज के अदवार से आपने सेट करना है और उसको कोशिश करनी है फॉलो करने की, और अगर ये ना हो पाए तो रिव्यू करेंगे क्यों फेल हुआ है, ठीक है। किसी भी काम के अंदर जो इस्लाम ने बात की है, जब आप मुकल्लफ हो गए तो इस्लाम ने क्या बोला है? ये चीज़ें वाजिब हैं, यानी क्या, कभी करें कभी ना करें, करनी है, नमाज पढ़नी है, रोज़ा रखना है, फॉर्म्स देना है। दूसरे लफ्ज़ों में इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी। तो पांचवी टिप बच्चों के साथ किसी भी तरबियत के अनाबीन को पैदा करने की कंसिस्टेंसी। जो काम बच्चे के साथ करें तो फिर आपने कंसिस्टेंट रहना है, यानी कि आज आओ बेटा खेल लिया तुम्हारे साथ, अब मैं मसरूफ हूँ अगले दो महीने तक, लिहाजा नहीं, फिर अकीम होने वाला नहीं। बच्चे के अंदर मुताले की आदत डालनी है, खुद किताबें लें पढ़ें। मेरी बेटी छोटी सी है और वो शी स्टार्ट रीडिंग बुक्स, रीज़न को देखती है अब्बा की आदत है पढ़ने की, तो ज़्यादा पढ़ते हैं, छोटी सी है वो भी, छोटी जो बुक्स हैं वो खुद ही पढ़ती है बैठ के, अच्छा आके बराबर बैठती है आवाज़ से पढ़ता है, देखे गए अब्बा मैं पढ़ रही हूँ, क्यों, तो देख रही हूँ करेगी। बच्चों के अंदर मुताले की आदत डालना चाहते हैं स्टार्ट रेडी, ठीक है, यानी जो उसूल नंबर वन है कॉपी कैट, जो चीज़ ईजाद करनी है वो आपको करनी है। बहुत रेयर, बहुत, हम ये नहीं कह रहे कि हर 100% यही हो सकता है, एक एक्सेप्शनल केस हो दो हो, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता कि आप ना करें और आप बोलें बच्चे में हो जाए। हाँ, अगर बच्चा कर रहा है इसके माने कहीं और से उसने अडॉप्ट किया होगा, इस तरह वो मसलन एक फैमिली थी बड़ी मजहबी फैमिली और वालदा भी ज़ाकरा और मजालिस पढ़ने वाले घरों में, देखो बच्चा जो गाली बकना शुरू हो गया, अब परेशान के ना घर में बकता है स्कूल में, इस्लामी चक्कर क्या है? जब आइडेंटिफाई किया तो पता लगा वैन में नया बच्चा है जिसको आदत है गाली बकने की। आप देख रहे हैं कि एक एक चीज़ पर निगाह होनी चाहिए, यानी उसने जो एक बैड हैबिट लर्न की कहाँ से की, ना वो घर से लर्न कर रहा है ना वो स्कूल से लर्न कर रहा है, लेकिन स्कूल से घर के दरमियान उस वैन के अंदर जिसमें आता जाता है उसमें एक ऐसा बच्चा है जो बेसिकली उस बात का आदि है जो आप नहीं चाहते। तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप बेसिकली अब बच्चा है तो ज़रा आप, अक्सर उलमा ने ये वाक़या बयान किया बचपन से आपने सुना है कि जब हसनैन करीमैन बचपने में थे तो जब मस्जिद नबी से आते थे तो जनाब सैयद उनसे पूछते थे क्या बताया नाना, दैट वॉज एन स्ट्रेटजी फॉर अस, कि भाई बच्चा अगर आया है स्कूल से आज उसका चेहरा सुर्ख है तो बुला के पूछा बेटा ये आज सुर्ख क्यों है चेहरा। रोज़ाना वो प्रॉपरली यूनिफॉर्म में आता था, एक दिन देखा कि बेसिकली शर्ट का एक हिस्सा बाहर निकला है, पूछा कि भाई बेटा बाहर क्यों आज, और सोचा लड़के आया हो क्यों नहीं नोट किया आपने। तो बी विजिलेंट, अगर बच्चे को उसी स्टेज पे न्यूट्रलाइज करना आसान है जब वहाँ से स्टार्टिंग हुई है किसी बैड हैबिट की, ये ना करें कि आप, अगर आपकी खुद आदत नहीं है हाथ धो के खाना खाने की, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाने की, एंड यू स्टार्ट टीचिंग ऑल द टाइम, बेटा एक साल से कह रहा हूँ तुमने बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू क्यों नहीं किया, उसने देखा अब्बा ही नहीं पढ़ते, अब्बा ने डिक्टेट किया। तो दोनों जो हमने रूल्स की बात की पिछले वाले टिप के अंदर, वो हम बताएंगे कि जब आप रूल सेट करें तो रूल प्रैक्टिकली कैसे सेट करेंगे, उसकी रिफ्लेक्शन अगर नहीं है तो भूल जाएं। तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो काम करवाने जा रहे हैं बच्चे के साथ कोशिश करें रेगुलर बेसिस पे करें, ठीक है ना। अगर आप उसको ब्रेक देंगे तो वो वाली तरबियत का असर उसमें पैदा नहीं होगा। टिप नंबर 6, जो आज कल अभी हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे तालीम के अदवार से, जो वेस्टर्नाइज कल्चर के अंदर एक चीज है वो वाय, भाई मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं आपकी क्यों सुनू, ये उस कल्चर का एक इम्पैक्ट है। तो सबसे पहली चीज जो है वो अगर आप बच्चे से पूछेंगे क्यों, ये पूछना तो है कि अगर मट्टी वाले कपड़े आ जाएं वैसे साफ रहते थे तो क्यों, लेकिन क्यों को क्यों की तरह नहीं पूछना है, कैसे पूछना है, ये आर्ट, ठीक है। कि गले में हाथ डालना है, बैठना है, थोड़ा सा प्यार करना है, एक दो लाइट बातें करनी है, अरे ये मट्टी नजर आ रही है, अरे ये मट्टी कहाँ से आई, ये नहीं बोला कि कपड़े गंदे करे क्यों आए हो, शूज जोड़ाना पॉलिश करके देती हूँ, ये क्या कर लिया तुम, मट्टी में खेलते हो क्या, ये भी तरीका था जो हम लोग करते हैं। लेकिन देयर इज अनदर वे, जब आपने देखा बच्चा आज डाउन फेस के साथ आया है, डल है, तो सत्ता उसे डांट पड़ी हो तो आप भी आके डांट रहे हैं, स्टार्टिंग ही घर से डांट से हुई तो आप डिप्रेस डर डिप्रेस होगा, टीचर ने क्लास में डांटा या बच्चे से फाइट हुई तो उसका मूड लो हुआ हुआ है, आप पिक करें उसके मूड को देख के किसके मन, आप उसको न्यूट्रलाइज करें फौरन हैप्पी फेस के साथ, कोई अच्छी बात करके उसको प्यार करके, ना कि अगला डिक्टेशन दे के। ये हमारे घरों में हो रहा है, दिस इज अ फंडामेंटल रीजन कि वाई द चाइल्ड आर नॉट ओबेइंग अस। वो आया था अपनी दुनिया के पास, रिमेंबर योर दुनिया, वो अपनी दुनिया के पास आया, दुनिया ने क्या बोला, झाड़ पिलाई, वो पहले ही झाड़ खा के आया था, आपने एक और झाड़ पिलाई, वो बेचारा अब वो क्या करेगा, आपसे एक्सपेक्टेशन ऐसा ऐसा लो कर देगा। ये वो शाखसाना पता है कि क्यों आज के दौर में पेरेंट्स की इज्जतें नहीं हो रही हैं बड़ों की, कि हमने उनकी एक्सपेक्टेशन को लो लेवल पर लिया है, जब उन्हें पता है कि आप उनके लिए मुआविन साबित नहीं होंगे। इसका एक इम्पैक्ट निकलता है कि उस शख्स के रिस्पेक्ट, मसलन आपके ऑफिस में एक बॉस हो जो आपकी बात को कम से कम अगर सॉल्व ना करे सुन जरूर लेता है, और दो सिंपैथेटिक कलमात बयान करता है जो आपको थोड़े से हौसला देते हैं, तो आप उसके पास जाके गुफ्तगू करते हैं ना। लेकिन एक दफ़ा गए सर मुझे छुट्टी चाहिए, उसने नहीं चले जाओ कोई छुट्टी नहीं है, अगले टाइम एक महीने बाद दोबारा गए, उसने गुस्से में आपकी एप्लीकेशन लिखे, अब मुझे बताएं आप जाएंगे उसके पास। तो हम घरों में ये कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो स्कूल से आए बच्चा, कॉलेज से आए, अगर आप देखें फेस रीड करें, उसके लिबास के देखें, कैसे वो आया आते साथ उसने बैग पटका है, तो बजाय इसके कि डांटें कि तुम्हें तमीज़ नहीं है 12 साल के हो गए बैग बैग को पटक रहे हो, पूछें तो रीज़न क्या बने कि उसने आके बैग को पटका है, उस चीज़ को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश, जितना अर्ली फेज में कर लेंगे उतनी तरबियत आपके लिए आसान हो जाएगी। तो ये जो सोर्स ऑफ बिहेवियर है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एड्रेस करने के लिए जो वाय है यानी ये क्यों किया इसने, इसको डायरेक्ट नहीं करना, जिसे कहते हैं ना कान को घुमा के पकड़ना, तो बच्चों के साथ उस रीज़न को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने ना डिक्टेशन देना है, ना उसे डायरेक्ट वाय पूछना है, बल्कि प्यार के साथ एक जर्नल बात करके और फिर उसको इस लाइटर नोट के साथ, ताकि वो खुद बताए। और बच्चे हमेशा फ्रेंडली नेचर के होते हैं, बच्चों की जो आदत है फ्रेंडली होती है, तो आप फ्रेंडली नेचर के साथ उससे वो चीज़ उगलवाएं। जितना छोटा बच्चा है यकीन करें उससे उसको जल्दी उगलवाना आसान है आपके लिए, बनिस्बत बड़ों के ये बहुत आसान है, इसलिए अर्ली एज की तरबियत पेशेंस मांगती है, लेकिन सबसे इफेक्टिव है जो चीज़ आपने इस एज में इंजेक्ट कर दी। मसलन खुद रसूल अल्लाह की हदीस है कि बचपने के अंदर कोई चीज़ तालीम करना ऐसा ही है जैसे पत्थर पर लकीर, और जब पत्थर पर लकीर हो तो फिर वो मिटती है, इसलिए बचपन की बातें क्यों याद हैं आपको। और रसूल अल्लाह का दूसरा मान कि जब आप बड़े हो जाते हैं तो कोई चीज़ बताना ऐसा ही जैसे बुलबुले पे लकीर, और बुलबुला क्या होता है, झाग की तरह फौरन फूंक भी मारे, इसलिए बोलते हैं कल जो बताया वो याद नहीं है, जो स्पीच मौलाना की पिछले साल सुनी थी यहाँ पर वो याद नहीं होगी, वो भले पूरी स्पीच बता भी दें पिछले साल की, उन्हें पता है कि आवाम के जहन में, तो वो आगे बाज़ जगह नाम लिए बगैर बहुत सारे जो मशहूर ब्रांड्स हैं वही कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं। ठीक है ना, जो पिछले सालों में किया हुआ। तो अब अगर वहाँ जाके बैठेगा बंदा, वो तो फौरन क्लिक करते हैं, यार ये तो वही पॉइंट है, अब अगला ये पॉइंट बताएगा, फिर क्या करते हैं आप, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो फिर होता है यार किसी ऐसे को सुनते हैं जो कोई इल्म में जो हमने ना सुना हो, तो फिर ये होता है तो हमें चूंकि याद ही नहीं रहती। तो रीज़न वही रीज़न तो पिछले बना है, कंसिस्टेंसी, फोकस, कंसंट्रेशन, तदब्बुर। ठीक है, तो आपके पास बिहेवियर को आइडेंटिफाई करने की सोर्स जो है वो पता आइडेंटिफाई करें और डायरेक्ट क्वेश्चन ना करें, ये रूल नंबर 6 है, अगर उसके बिहेवियर में तब्दीली आती है। ठीक है जनाब, रूल नंबर 7, टिप नंबर 7, नो पॉलिसी को ख़त्म करें। अच्छा, जो हमने एक्सप्लेन किया था ना कि अगर वो कोई गलत काम करना चाह रहा है तो ये नहीं कि आप उसे करने देंगे, देर इज अ वे आउट टू डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड। हम अभी चाइल्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए फोकस में रखिएगा कि जितना छोटा बच्चा है उसको डिस्ट्रैक्ट करना उतना ही आसान और क्विक है। यानी अगर वो रोना शुरू, जैसे अक्सर बैठते थे जो बात को ये रोएगा वो, तो उसको ट्विस्ट करना विद इन सेकेंड है। ठीक है, आपको अंदर पेशेंस लाना पड़ेगा, क्योंकि जब वो रो रहा है आपके कानों को बुरा लगेगा। ठीक है ना, आप काम कर रही है, रोटी पका रही है, बर्तन धो रही है, कुछ भी कर रही है, एक्स वाई जेड काम कर रही है, साथ की खिदमत कर रही है, और बच्चा रोए जा रहा है, तो आपके कानों में वो रोना इरिटेटिंग बनेगा। इरिटेट होंगे, टेम्पर लूज होगा, टेम्पर लूज होगा गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा बढ़ेगा चीखेंगे, और बढ़ेगा थप्पड़ लगाएंगे, ये सर्किट परमानेंट हो जाएगा। इधर बच्चे ने आँख या फौरन आँख दिखा के और थप्पड़ लगाए, क्यों? सर्किट बना हुआ था, स्ट्रांग हो चुका था, अब आप फौरन लास्ट स्टेप वाला रिएक्शन दे रहे होंगे, यानी थप्पड़ लगाने वाला। शुरू में समझा रहे होते हैं ना, ये सर्किट डेवलप हो रहा है, आप सर्किट डेवलप कर रहे हैं एंगर का। एंड इट इवेंचुअली, कभी तदब्बुर किया है कि क्यों रखा है इस्लाम ने, क्या वो भले वालदा ही क्यों ना हो, यानी जो पैदा कर रही है इतनी सोबत उठा रही है, थप्पड़ मारा तो दियत देनी पड़ेगी, दियत भी क्या सोना, अल्लाह मेरे को पता था कि ये सोना कितना महंगा होना है तभी इतनी दियत रखी, नील पड़ जाए तो कितने कितने मिसकाल हैं, कोई शरीय काम बताएगा कि अगर लाल हो जाए, अगर नील पड़ जाए और अगर खून निकल आए, कितने मिसकाल सोना देना पड़ेगा? 3.5 मिसकाल, 3.5 मिसकाल कितने ग्राम के बराबर है आज के दौर में? तौजीह मसाइल अगर घर में हो, उसके बैग पे जाइएगा, उसमें लिखा होगा मुल्हिकात, उसके अंदर एक ग्लॉसरी बनी हुई है औजान की, यानी वज़न की, उसके अंदर जाके अगर वो, फिर प्रिंट का मसला है, छठे या सातवें नंबर पर आपको मिल जाएगा इतने चने के बराबर इतने नखूस, और इतने नखूस के बराबर इतने मिसकाल, और इतने मिसकाल के बराबर इतने ग्राम सोना बनता है। तो थप्पड़ लगाने पर जब माँ को सोना देना पड़ रहा है, तो इसके माने कितना खतरनाक लेवल होगा बच्चे की तरबियत पर, तभी अल्लाह ने इतनी लेवल की पनिशमेंट रखी है। यानी सबसे ज़्यादा, अब आप थोड़ा सा आपकी अजान को तदब्बुर के कैसे तदब्बुर करना चाहिए, एक तरफ वो उनवान जहन में रखें कि जो शख्स आके रसूलुल्लाह से माँ के बारे में उसके हुकूक को पूछ रहा है, गिनवा जा रहा है, ये कर दूँ, ये कर दूँ, ये कर दूँ, हज कराऊँ, वो कराऊँ, कंधे पे कराऊँ, कराऊँ, रसूलुल्लाह के कुछ भी कर ले तू, माँ की उस एक करवट का, कि जब तू बदन मादर में था और जो तकलीफ होती थी, उस एक करवट का भी हिसाब अदा नहीं कर सकता। कहाँ ये लेवल, कहाँ ये लेवल कि अगर उसी माँ ने थप्पड़ लगाया तो माँ को इतना पनिश किया जा रहा है कि इतने ग्राम सोना दो नहीं दे सकती, तो जब बाल हो जाए तो माफी मांगो, माँ को कहा जा रहा है माफी मांगो, वरना पकड़ी जाओगी वहां पर। सीधे इंटेंसिटी बताने का मकसद है कि कितना डिस्ट्रक्टिव होगा उस बच्चे के लिए वो कम, इसलिए क्या है, मारना भी है तादीबी मार, फिक्र लिहाज से सिर्फ एक शख्स के लिए जायज है, कौन है वो? सब मदरसे के स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट के वाले हैं, मैं भूल गया था। तो तादीबी लिहाज से, तादीब यानी जैसे कहते हैं तंबीहन, सिर्फ बाप को इजाज़त है कि वो बच्चे को थप्पड़ मार सकता है, लेकिन कब? कि जब वो देख रहा है कि अब कोई चारा नहीं है, लेकिन कहाँ गाल पे मारने की उसको भी इजाज़त नहीं। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले थप्पड़, तो इसके क्या माने हैं, अब टाइम क्योंकि कम है, वरना कोरिलेट करते हैं कि गाल पे थप्पड़ मारने के दिमाग के असरात क्या होते हैं, फेस पे असरात क्या, तो आप उसके पीठ पे मारेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इतना मारेंगे कि ना नील पड़े ना लाल हो, इतनी इतनी लो इंटेंसिटी होगी, जैसे कहते हैं थपथपी दूसरे लफ्जों में, थोड़ी थपथपी की आयर फॉर्म, सिर्फ भाप को ज़्यादा है फिर लिहाज से इतना। तो इसके माने कि थप्पड़ का इम्पैक्ट शख्सियत साजिब इतना बुरा है कि माँ जैसी हस्ती को भी खुदा इजाज़त नहीं देता, ना सिर्फ इजाज़त नहीं देता बल्कि पनिश करता है। और एवरी स्लैब हर थप्पड़ के बस ये करना है रिपीट रिपीटेड, बचपन से लेके अब तक 2000 थप्पड़ मारोगे 2000 मल्टीप्लाई कर ले तो शायद स्टेट बैंक के फॉरन रिजर्व बन जाएंगे वो, ठीक है। 6 अरब पे अभी हम बैठे हुए हैं जिसमें 3 अरब तो बाकी इमदाद है, 3 कंट्री के वो होल्ड किए हैं, 3 अरब का आपके पास खाली फॉरन रिजर्व मौजूद है स्टेट बैंक का सर, ठीक है। और चाइना के अंदर एक एक कॉम्प्लेक्स है, छोटी छोटी बिल्डिंग है, वो 20-20 अरब रुपये का रेवेन्यू जनरेट करती है साल का। तो आप सब भी अमीर बना सकते हैं, अपने बेटे को थप्पड़ लगाते जाए लेकिन उसको क्या जाकर पैसा हो जाएगा, ताकि अब जवान हो तो सोने की कान बन चुकी है उसकी। सही चले वापस आए, यस जो काम वो कह रहा है देर इज अ वे, रूल इज डोंट फॉलो ऑलवेज नो स्ट्रेटजी, आपने हर बात पे उसे नो नहीं करना। ये बड़ा मुश्किल मरहला है इनो, क्योंकि हम इतने तंग आ चुके हैं हर चीज़ से कि हम हर चीज़ पे फौरन नो कहते हैं बच्चों को। तो आपने यस पॉलिसी अडॉप्ट करनी है, जैसे मैंने एक खातून ने पूछा था तो कहा कि अगर वो जो चीज़ करना चाह रहा है गो सेट, वो कह रहे हैं ये इसलिए करना चाहता हूँ, आप उसमें से 2-4 माइनस करें बोले ठीक है फाइन इन 2 पे कर लो, तो उसके जहन में सिग्नल जाएगा यस कर लो। लेकिन जब हमेशा वो जब भी आए बेटा ये करना है नो, ये कर लूँ नो, ये उठा लूँ नो, जब हर चीज़ लोग उसके माइंड की परसेप्शन ऑलवेज क्या बनेगी नो, जब वो भी माँ बनेगा बाप बनेगा वो भी हर चीज़ के लिए नो, इसका शख्सियत में इम्पैक्ट क्या निकलेगा, बहुत सारे इम्पैक्ट निकलेगा, लेकिन अतात के अतबार से खुदा की अतात करने में भी राम सुस्ती और काहली बढ़ने में। इस नो का एक ख़तरनाक अंसर ये है कि फिर अहकाम इलाही अहकाम दीन के लिए भी आप क्या हो जाएंगे नो कर रहे हैं हो जाएंगे, क्योंकि आपकी ज़बान पे भी नो की आदत है, आपके जहन के ऊपर भी सुन सुन के जो सर्किट डोमिनेट कर रहा है वो नो का है, वर्क ऑन इट। ये हम लोग के लिए भी है कि हम अगर ख़ुद की भी तरीके शादी करने जाने तो इस नो की हर चीज़ में नो को, हाँ नो करना तो कहाँ करें, नहीं अनिल मनकर पर, यस करना तो अमरुल मारूफ पर, ये स्ट्रेटजी ड्रॉप करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। 8वां फोकस इस बेसिकली पॉजिटिव रहें किस चीज़ में, जो इट इज PBS आप समझें, एनीबडी नोज अबाउट द PBS किस चीज़ का एप्लीकेशन है, इट्स अ प्रॉब्लम बेस्ड सोल्यूशन। तो जो भी मसला उसके साथ है जो आपने देखा शख्सियत के अंदर, स्कूल के अंदर आके बच्चे बताते हैं कि फला मैडम ये करती हैं, फला मिस सख्त हैं, मारती हैं, वैन में ये प्रॉब्लम है, सीट ख़राब है, वो में बार बार बैग गिरता रहता है, एड्रेस दैट, एटलीस्ट वी कैन नॉट सॉल्व एट द मोमेंट, कम अज कम सोल्यूशन के लिए चंद तसल्ली बख्श जुमले ही उसके लिए बहुत हैं। तो आपने पॉजिटिवली उसको आंसर करना है उसके प्रॉब्लम्स को, ना कि ये कि भाई हम भी थे तुम भी थे एक ही चीज़ है क्या हुआ सभी हैं, ये चीज़ क्या करेंगे आपका जितना जितना ये होगा आपको जैसे हमने बात एतमाद ख़त्म होता जाएगा कि ये वालदैन ज़रूर हैं लेकिन मेरे मसले के लिए कोई भी सीरियस हल, ये बहुत अगर किसी पेरेंट के साथ ये स्टेज आ चुका है दुआ की जा सकती है फिर, क्योंकि ये चीज़ रिवर्स करना बहुत मुश्किल है जिस बच्चे के अंदर। और ये कहाँ पर मिलती है आपको, वेस्ट में कॉमन है, हमारे यहाँ सिटी के अंदर अगर आप डिफेंस क्लिफ्टन में जाएंगे तो ये इस तरह के केसेस बहुत कॉमन है क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग है ना। तो ये क्या करते हैं एतमाद पेरेंट्स से ख़त्म हो जाए तो फिर वो कहते हैं कि वो फिर अपनी पनाह कहाँ ढूंढते हैं, दो चीज़ों में, अगर तो डिप्रेशन मिलता है उनको तो फिर नशे के आदि बन जाते हैं, वो डिफेंस में रहते हैं इसलिए आइस वाइस का नशा करते हैं, क्रिस्टल का नशा करते हैं। दूसरा क्या होता है बैड सोबत के अंदर, क्योंकि जहाँ आपको पता है ये भी एक अलमिया है कि जो भी रॉन्ग वो होती हैं जगहें वहाँ पर अफराद नए आने वालों को इतना वार्म वेलकम करते हैं, इतने हम्बल होकर वेलकम करते हैं कि बंदा बोलता है कितने अखलाक से मिलता है, वो आपको टाइम देते हैं। क्रिमिनल्स के अंदर एक क्वालिटी ये है कि दे गिव टाइम टू द टीम मेंबर, या हमारे बच्चों के लिए टाइम नहीं है वो क्राइम के लिए टीम मेंबर, इसलिए ऑर्गेनाइज क्राइम क्यों कामयाब होते हैं ये फलसफा है, टाइम देना। तो आप पॉजिटिव होकर टाइम दें तो इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं वो हो जाएंगी। और एक इसके अंदर इम्पॉर्टेंट ख़तरनाक चीज़ है कि बच्चों के अंदर ये आदत डेवलप ना करवाएं, बिलखसूस अगर वो 7 साल को क्रॉस कर चुके हैं, ये करोगे तो ये दूंगा, ये कर लिया तो ये दूंगा। ये सब कहते हैं रिश्वत का कल्चर आम होने में एक उन्वान यहाँ से शुरू होता है कि ये कर दिया तो ये मिल जाएगा। तो जब वो ऑफिस में जाएगा बोलेगा अच्छा मिठाई के नाम पे दे दो कर दूंगा साइन, कहाँ से याद हो, याद वहाँ से हुआ है। तो आप भी पकड़े जाएंगे ये धरने से कि हम बोलेंगे हमारे तो कल्चर बन चुका है। कल्चर बनाने में रोल किसका था, बचपने से टॉफियाँ चॉकलेट गिफ्ट दे दे के ये कर लिया तो ये। हाँ, इसको एड्रेस कैसे करना है, यानी मोटिवेशन कैसे लेके आनी है, बोलिए बड़ी बारीक और सेंसिटिव बाउंड्री है ये, इट्स अ ह्यूज सेंसिटिव टॉपिक। ये दो जुमले में एक्सप्लेन करना, एक मिसाल में एक्सप्लेन करना, ये क्लैरिफाई नहीं करेगा आपको। तो फिर वो वाली हदीस के भाई बच्चों के अंदर एतमाद लाने के लिए उनकी तारीफ करो, उन्हें तोहफा दो, ये क्या चीज़ है। फिर क्लियर बाउंड्री रखनी पड़ेगी किस किस महवर में किस तरह, ना कि नमाज पढ़ दो ये दे दूंगा, नमाज पढ़ ले तो गिफ्ट दे दें उसको बगैर बताए हुए कि अल्लाह तुमने नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला कितना खुश होगा, अल्लाह ताला ने मेरे रिश्तों बरकत दी, मेरे रिश्तों बरकत तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आ गया, ना कि ये पढ़ोगे तो एंड दोनों का सेम था कि दोनों में गिफ्ट मिला, वे अलग थी, अप्रोच अलग थी, डायमेंशन एंड परसेप्शन और टीचिंग की स्ट्रेटेजी डिफरेंट थी। तो एक में वो क्या बनेगा, रिश्वत लेने वाला, और दूसरे वाले बात की स्ट्रेटेजी क्या बनेगा, सखी दिल बनेगा, दूसरों को देने वाला। समझे ना फर्क, ठीक है, क्योंकि टाइम हो गया है, बहरल गुंजाइश होती है तो 3 टिप और रह गई हैं, तो बहरल अगर 5 मिनट है तो रैप अप कर दूं, या तो आप लोग के ऊपर है, अगर आप लोग कहें तो 3 टिप और बता दूं या फिर इसको माइंड अप कर दें आप। अच्छा ठीक है, चले सर। तो ये 8वीं टिप थी बेसिकली कि फोकस रहना पॉजिटिव हो गए, ठीक है ना। इसमें भी एक पूरी पॉइंट है कि पॉजिटिव नेगेटिव एंड रियलिस्टिक अप्रोच में क्या डिफरेंसेस हैं, वो नेक्स्ट टाइम। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जब आपने सारी चीज़ें डील कर ली तो आपको जो बच्चे के अंदर जो ज़िद आती है, ज़िद को काउंटर करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी क्या है, उसको कॉन्सिक्वेंस के बारे में एटलीस्ट मुतवज्जा करना। अल्फाज जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसे कोशिश करिएगा बहुत ही तवज्जो के साथ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि अल्फाज को राइट अंदाज में इस्तेमाल करूँ, क्योंकि हर अल्फाज के अपने डायमेंशन होती है। आपने बच्चों के अंदर कॉन्सिक्वेंस के लेवल को पिच करवाना है, तवज्जो दिलानी है, अगेन मुतवज्जा करना है कि बेटा ये हुआ तो ये हो सकता है, ना कि नहीं ये करोगे तो फौरन ये हो जाए, नहीं। आप उसके थॉट प्रोसेस के अंदर तवज्जा वाला अनसर इग्नाइट कर दें, इतनी जॉब आपने कर दी है यकीन करना आप कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, अब वो आगे कहते हैं कि फला चीज़ करनी, फला पार्टी में जाना है कि सब दोस्त जा रहे हैं, तो वो पार्टी आप समझते हैं कि इनअप्रोप्रिएट है हमारे कल्चर और मजहब के अतबार से, अलिस्लाम अलाउ नहीं करता। तो एक तो ये नो स्ट्रेट अवे नो आप उन्हें बताया नहीं करना। आप क्या करें उसके कॉन्सिक्वेंस बताएं कि उस सोसाइटी में जो लोग जाते हैं वो किस टाइप के हैं, उस सोसाइटी में जाने वाले मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है, एक दो मिसालें आप दें कि वो ये हुए। जब आप ये काम करेंगे एक दो हदीस सपोर्ट कर दें कि इस्लाम में इसके बाद बस। अब आपको ये पॉइंट जज करना है अपने बेटे या बेटी के जहन में कि जो आपने गुफ्तगू इसके साथ 5 मिनट की कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर उस जगह जाने पर कहाँ पर जाकर उसको हिट किए, और ये आप रीड कर लेते हैं बस। जहाँ आपने देखा कि उसको हिट कर गए, अब ख़त्म कहानी, यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी ख़त्म, क्योंकि अब वो जाके सोचेगा अच्छा ये कहा था। अच्छा, अपने दोस्त के बारे में भी मिसाल दी कि उसने गया और उसके बाद क्या बना उसका। बस जब आपने उसमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया, बैठ जो भी काम करने आ रहा था इसके माने कि आपकी आधी जॉब वहाँ पर हो गई है। अब वो जब इवन नेक्स्ट टाइम भी आएगा, अब आप उसको जब कुछ बोलेंगे ना तो वो फिर दोबारा सोचेगा और कोशिश करेगा कि यार मैं क्यों जाऊँ। आप उसको ऑल्टरनेट ऑप्शन का बता दो, उधर जाना चाह रहे हो क्या, उससे बेहतर ये नहीं है, वहाँ पर ये भी और इसके ये फ़ायदे। तो उधर आपने उसके नुकसान बताए, और जब इधर ऑल्टरनेटिव दे दिया आपने, 90% जॉब अपने कोर्ट में कर लिए। अब वो 10% सिर्फ वो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करेगा और डिसीजन ले लेगा, प्रॉब्लम डिसीजन ये होगा वो जो आपने ऑल्टरनेट दिया है उसकी तरफ चला जाएगा। पहला सिनेरियो क्या था, आया आपने बोला नो, कहानी ख़त्म, उस टाइम वो नहीं जाएगा। कुछ अर्से बाद दोबारा किसी कोई सिनेरियो इस तरह आपने उससे इजाद की, उसने नो, हर टाइम पे आपसे याद मिलेगा, हो गया आगे बोलेगा मैं हो गया आगे, थोड़ा सा स्ट्रेटेजी। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये लॉजिकल हो, रैशनल हो, रैशनल के साथ आप उसको प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आपकी ज़िंदगी में कोई हुई है उसको कोट कर दें, साथ में एक ऑल्टरनेट सिनेरियो दे दें जिसपे वो सोचना शुरू कर दें, एंड योर जॉब इज डन। ठीक है, तो कॉन्सिक्वेंसेस को डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बच्चों के एतबार से, ये बड़ों के लिए आसान है लेकिन जब 3 साल का बच्चा है क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ये अलग स्टैंड, क्योंकि जारी पता है उसको आप ये बताएंगे नहीं कि ये हदीस सुनाएंगे, उसको क्या पता 3 साल के बच्चे को हदीस और रसूल और इस्लाम, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस को टैकल करने की स्ट्रेटेजी अलग ही चल रहा वो नेक्स्ट में। ठीक है, एंड देन बेसिकली जो आपसे बात की कॉपीकैट, आप जो कुछ कहेंगे बोलेंगे करेंगे उसने वही करना है। तो आपने जो कहा बच्चे को बोला सिगरेट नहीं पीना, उसने आगे पूछा कि मेरे दोस्त सिगरेट पीते हैं पी सकता हूँ, पहले तो करा के पूछ रहे, तो इसके माने कि आपने कुछ ना कुछ तरबियत की थी, एटलीस्ट वो पूछ तो रहा है आपसे आगे, आप बता नहीं बेटा इसके ये मुझे रसरात है, ये प्रॉब्लम है, ये पता लगा आपका खुद 2 दिन बाद कहीं खड़े हुए देख रहे पी रहे हैं, तो अब आप नेक्स्ट टाइम पूछेगा मैंने वो पी गया, फिर आपको कब पता लगेगा जब आएगा किस मैं जब। तो ये काम रिफ्लेक्ट करें जो कहा है आपने, अगर उसको बोला कि बेटा फेसबुक इस्तेमाल नहीं करनी तो आप भी फेसबुक इस्तेमाल ना, अगर करें तो फिर उसको रैशनल बताएं कि देखो मैं इन इन कामों में करता हूँ, आ जाओ तुम मेरी हेल्प करो, ये पोस्ट है अगर आप मेरे सामने अपलोड करके दिखाओ, अब जो भी तो जो काम आप कर रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करें, वरना ड्रास्टिक इफेक्ट निकलेंगे जो कि खतरनाक होते हैं। ठीक है जनाब, सही है। तो यहाँ पर जो है हम अराइज यहाँ अपने रोकते हैं, और उसके बाद जो है वो क्वेश्चन आंसर अगर एक दो लेना चाहे ले सकते हैं, बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर हम कवर अप करेंगे चीज़ों को। जी जनाब, एज वाइज कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना एक बार मिलकर सवाल पढ़ लीजिए सारे।